तो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित की सभा में भगवत कथा कहने लगे। उन्होंने पहले भगवान को प्रणाम करके अपने शिष्य गुरुदेव जी को प्रणाम किया, जो कल मैंने बतलाया था। उस समय बड़े बड़े सिद्ध ऋषि लोग, जिसमें शौनक आदि वयोवृद्ध भूत भविष्यत वर्तमान को जानने वाले महामहिम ऋषि महर्षि वहां पर एकत्रित थे। वो लोग सुत गोस्वामी से पूछने लगे, आप वेद उपनिषद और सारे शास्त्रों में प्रवीण हैं, अनुभव किए हुए हैं, इसलिए अपने गुरु से आपने जो सुना है, गुरु माने सुखदेव गोस्वामी से और श्रील वेद व्यास ने जितने ग्रंथों का प्रणय किया है, उसके भी तत्व को जानने वाले हैं, कलिकाल अभी है, प्रायेण अल्प आयुषः, प्राय बहुत छोटी उम्र की होते हैं, अधिक दिन जीवित नहीं, मंदा, बड़ी मंद बुद्धि के, सुमंद मतयो, उनकी मद बुद्धि भी मधी अधिक मंद है, मंद भाग्य, अपने सुख के लिए काम करने पर भी वो काम अपने लिए दुखदायी हो जाता है, और तरह तरह के उपद्रव हैं, भूरी भूरिणी भूरी कर्माणी स्वतव्यान विभागश, तरह तरह की कामनाओं की लहर उनके हृदय में उठती है। इसलिए हे साधो, सब विषयों को जानने वाले, अनुभव संपन्न, उन शास्त्रों से अपनी बुद्धि से विचार कर, हमारे लिए क्या करणीय है जिससे कि हमारा कल्याण हो, इस कलयुग में हमारा कल्याण हो, ऐसी कुछ बात बतलाइए। उस समय में सुत गोस्वामी अपने गुरु जी को प्रणाम किया, जो कल मैंने बतलाया, और प्रणाम करके बोले, मैंने अपने गुरु जी के मुख से जो कुछ सुना है, दूसरे ऋषि महर्षियों से जो कुछ सुना है, और अपना अनुभव जो कुछ किया, सुनने के बाद में हमने साधु संतों की जो सेवा की, अब मैं उनको अपने मन से विचार कर जीवों के कल्याण के लिए आपसे मैं कुछ बतला रहा हूं। जिससे उनके आत्मा का कल्याण होगा, शरीर के कल्याण की बात नहीं कही, आत्मा। सबई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रदोखजे अहेतुक प्रतिहता जात्मा संप्रसीद। बहुत तरह के धर्म होते हैं, बहुत तरह के अधिकार के भेद से, किंतु परम धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, मनुष्यों के लिए वही परम धर्म है जो जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले परमात्मा इत्यादि के भी मूल हैं, मूल है। उनके चरणों में बिना किसी कारण के भक्ति करने का नाम ओ भक्त, इससे वो प्रसन्न हो सकते हैं और उससे तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो सकती है। बिना भगवत भगवान की सेवा के बिना, उनकी कथाओं को सुने के बिना, उनके नाम के बिना कल्याण नहीं हो सकता। जैसे बहुत से धर्म है, मुसलमानों का भी मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियनों का भी, ईसाइयों का भी, उनका अपना धर्म है। हमारे यहाँ वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सन्यासी गृहस्थ ब्रह्मचारी, सबका अपना अपना धर्म है। ये सब धर्म है, इनसे कुछ बुद्धि शुद्ध होने पर, सत्संग होने पर ही भगवान के तरफ में रुचि जाएगी, अन्यथा इनसे कल्याण नहीं है। एक बात बतलाना चाहता हूं कि बहुत से लोगों की ऐसी, लोगों का ऐसा विचार है, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में बहुत तरह के विचार हैं, बहुत सी देवी देवता भगवान इत्यादि की उपासनाएं हैं, और धर्म ग्रंथ है एक दो नहीं, असंख्य धर्म ग्रंथ हैं। गीता है, रामायण है, भागवत है, वेद है, उपनिषद है, शास्त्र है, पुराण है, पुराण भी एक दो नहीं, 36 पुराण हैं, महाभारत है, बहुत से शास्त्र भी हैं, और उन लोगों में केवल एक बाइबल है, मुसलमानों में एक कुरान है, उनमें जेसस क्राइस्ट उपास्य है ईसाइयों में, और उन लोगों में मुसलमानों में एकमात्र अल्लाह या खुदा ही बस उपास्य है। उसमें कोई प्रश्न नहीं कर सकता, नहीं तो विधर्मी कह देंगे और गला उतार देंगे। बस एक ही बात है, और हमारे यहां तरह तरह के पुराण पुराण शास्त्र हैं, उपास्य भी बहुत तरह के हैं, इसलिए लोग कहते हैं, विशेष करके वो लोग भी कहते हैं, और हम लोगों के भी जो इस तत्व को नहीं जानते हैं, वो कहते हैं कि हिंदू सनातन धर्म में बहुत से देवता देवी बहुत तरह के विचार है, इसमें से हम कौन सा ग्रहण करें कौन न ग्रहण करें। किंतु बात यह ठीक नहीं है, जो नहीं समझते हैं उसको कहते हैं। बात वैसे ही है, ये हुई जैसे एक कॉलेज है जिसमें एक क्लास वन से लेकर के एमए पीएचडी तक है, अब बच्चा वहां जाता है तो वो कौन से क्लास में जाएगा, एमए में पढ़ेगा न बीए में पढ़ेगा न पीएचडी के क्लास में भर्ती होगा न क्लास फोर में न फाइव में, ये तो बड़ी भारी समस्या है, ये मूर्खों के लिए समस्या है। जो जिस योग्यता को रखता है, जिस क्लास की योग्यता को, जहां तक पढ़ करके आया है अपने स्कूल में, हाई स्कूल में, लोअर स्कूलों में, वहां से अपना सर्टिफिकेट ले आएगा और वो दिखलाएगा, और वहां के जो टीचर होंगे उसकी योग्यता के अनुसार उस क्लास में भर्ती करेंगे, चाहने से भी नहीं होगा। तो उनके यहां कोई क्लास नहीं है, बस एक ही क्लास है, और हमारे यहाँ क्या है, तरह तरह की क्लास हैं, जिसकी जो योग्यता है, जो तामसिक विचार वाला है, वो दुर्गा काली इत्यादि का भजन करे, कोई हर्ज नहीं, उससे उसकी बुद्धि शुद्ध करके आगे बढ़ेगा। जिसकी राशिक बुद्धि है वो राशिक देवताओं की उपासना करे, राशिक शास्त्रों का अध्ययन करे, उसके लिए वही उपयुक्त है। और जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं वे शास्त्रीय शास्त्रों का अध्ययन करें और सात्विक देवता विष्णु इत्यादि का भजन करें। यदि एक ही क्लास रहेगा तो योग्यता का माप नहीं होगा और वो कभी भी उन्नत नहीं हो सकता है। जिस धर्म में कोई प्रश्न करने का अवकाश नहीं है, अपने संदेहों को दूर करने का अवकाश है, मानो तो मानो नहीं तो तुमको हम काट डालेंगे, वो धर्म कहां तक उन्नत हो सकता है। लोगों की शंकाएं नहीं दूर हो सकती, इसलिए हमारा सनातन धर्म है। भगवान को नहीं मानते हैं तो भी उसी में हो, शंका की गुंजाइश है, तुम शंका करो। हमारे वेदों में, शास्त्रों में, भागवत में, पुराण में ऐसी कोई शंका नहीं है जिसका उत्तर नहीं है ने? हमारे यहाँ अलग अलग चीजें नहीं है, एक कॉलेज है जो नीचे से ऊपर तक सब में इसको एडमिशन दिया जा सकता है और वहीं से फिर आगे बढ़ेगा। कहां तक जाएगा है? जाएगा भगवान के प्रेम तक, अंतिम अवस्था तक पहुंच सकता है। जितने भी हमारे शास्त्र है उसमें शंका पहले किया गया, अर्जुन ने शंका किया, कृष्ण ने उत्तर दिया। गीता में, श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया और उसका उत्तर दिया हमारे सुखदेव गोस्वामी ने। हमारे यहां जितने भी शंकाएं कर सकते हैं करो, और उसका उत्तर समुचित रूप में वहां पर मौजूद है। इसलिए परम उदार हमारी भारतीय संस्कृति। और सब धर्म अभी नए नए हैं, कोई अभी 1500 वर्ष का हुआ और कोई अभी 2000 वर्ष का, इससे अधिक के नहीं है। और हमारा सनातन धर्म कब से है, लाखों सृष्टियां हुई, सृष्टियों का अंत हुआ, और जैसा का तैसा है। कभी कभी वो ढक जाता है इन तामसिक प्रवृत्तियों से और फिर वो बादल जैसे हट जाते हैं। कोई भगवान का अवतार आया, जैसे कृष्ण आए, रामचंद्र जी आए, शंकर जी आए और सब आते हैं और इनको हटा देते हैं मेघों को, और फिर वो नया हो जाता है। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग के अंत में कल के भगवान भी आ सकते हैं, या इसमें जरूरत नहीं है, इसमें चैतन्य महाप्रभु जी आए और सारे विश्व में जो नाम प्रचार किया, और यहां पर भी नाम हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इसको साधारण मत समझिए। एक बार भी इस नाम का उच्चारण करने से उसमें ऐसी हो जाएगी कि उसकी आत्मा के पर्दे हटने लग जाएंगे, आत्मज्ञान हो जाएगा कुछ दिनों के बाद में, और शुद्ध रूप से करें तो कृष्ण के प्रति प्रेम भी हो जाएगा, इतना शक्तिशाली है। नहीं तो ये हमारे वाल्मीकि जी मरा मरा कर करके और ऐसे बन गए, आज तक हम उनको याद करते हैं। ये तुलसी कैसे थे, महाकामुक तुलसीदास जी, रामचरितमानस को लिखने वाले, स्त्रियों के अपने स्त्री के इतने वशीभूत थे और इतने सुनते हैं ये मूर्ख थे कि पेड़ की डाल पर बैठ करके उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर बैठे हैं। और भगवान का नाम करने से देखो ये कैसे हो गए। उन्होंने अपने रामायण में भी इसको स्वीकार किया है। इसलिए परम धर्म है, और सब देवताओं की उपासना, माता पिता की उपासना, गुरुजनों की उपासना, पति की उपासना, ये ठीक है अपने स्थान पर, किंतु इससे परम कल्याण नहीं होगा। अभी जो समस्याएं आ रही हैं इससे नहीं आप ऊपर उठ सकते। जब उनके करने से कुछ शुद्ध चित्त वृत्ति हो जाएगी तो भगवान के चरणों में जैसा कहा, सवई पुंसांग परो धर्म, मनुष्य मात्र के लिए भगवान के चरणों में भक्ति का होना यही परम धर्म है, इससे बढ़कर के नहीं है। करते चलो ये सब संसारी चीजें, तामसिक, राजसिक और सात्विक उपासना है, किंतु इससे नहीं होगा और अंत में वहां पहुंचना पड़ेगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनत आशु ज्ञानम वैराग्यम च जदहेतुकम। यदि कोई ये वासुदेव जो कृष्ण है, नंदनंदन कृष्ण है, ये जो भगवान है, इनके चरणों में थोड़ी सी भी भक्ति योग यदि हो जाए, थोड़ी सी भी भक्ति हो जाए, उनका नाम उच्चारण हो, किसी सदगुरु से हरिनाम दीक्षा इत्यादि लेकर भगवान की कथाओं को श्रवण करना, कीर्तन करना, इससे सारे जितने भी हैं संसार के प्रति आसक्ति सदा के लिए कट जाएगी, यह आसक्ति संसार में यही हमारे रोगों का और दुर्भाग्य का ये सूचक है। ये सब आसक्ति जहां कट गई, हृदय निर्मल हुआ, उस समय में ज्ञान और वैराग्य जिसकी बात कल कर रहा था अपने आप हो जाएगा। ये गोपियां थी, कौन से स्कूल में पढ़ी थी, कॉलेज में पढ़ी थी, नहीं पढ़ी, और स्वयं भगवान इनके वशीभूत होकर के इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते और उनकी बातों को काट देती हैं, इतना तत्व जानती हैं। वैराग्य कितना है हम लोग अनुमान नहीं कर सकते कि कितना वैराग्य है। इसलिए भगवान की भक्ति करने से अवश्य ही वैराग्य आएगा, तत्व ज्ञान होगा। ये वदन्ति तत्व विदत्तम यजज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शक्तते। यही भगवान का नाम तत्वविद जो जानने वाले हैं वो कहते हैं कि अद्वैय ज्ञान, एक ही परमात्मा परमेश्वर हैं जिनको ब्रह्म परमात्मा या भगवान कहा जाता, एक ही तत्व है, दो तत्व नहीं है। इसी को अल्लाह कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, क्राइस्ट कह लीजिए। क्राइस्ट के लिए मैंने बतलाया था ना, ये क्राइस्ट कौन है यहाँ की, नहीं बतलाया, नहीं बतलाया। ये हमारे जेसस गए थे हमारे इंडिया में अपने बचपन की स्थिति में 16-17 वर्ष की, जिनको सूली पर चढ़ाया गया था, वो गए वृंदावन में, गए अयोध्या में, गए काशी में, गए जगन्नाथ में, गए उन्होंने देखा जी ये कृष्ण की बड़ी महिमा है। तो वहां के लोग कृष्ण को क्रेष्ट कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कोई कहते हैं कृष्ण, किंतु कम कहते हैं। हमारे उत्तर भारत में कृष्ण कहते हैं और उधर कहते हैं कृष्ण, फिर उनको क्रेष्ट कहते हैं और फिर कृष्ण से बदल करके थोड़ा सा अपभ्रंश हो करके ये क्रिस्ट हुआ और कृष्ण से फिर ये क्राइस्ट हो गया। इसलिए ये क्राइस्ट अलग नहीं है, ये कौन है, ये कृष्ण है। इसलिए जेसस क्राइस्ट को अपना फादर कहते हैं, फादर ना, जैसा पिता होगा उसका बेटा भी कैसा होगा उसी के समान होगा। यदि पिता पुरुष हैं, मनुष्य है, तो उसका बेटा भी मनुष्य हो, गधा नहीं, घोड़ा गधा सुअर नहीं होगा। तो वो जब मनुष्य है तो उसका पिता कैसा होगा, अनुमान कीजिए कैसा होगा, जरूर मनुष्य का आकार का होगा। गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, गॉड ने ये मनुष्यों को अपने जैसा बनाया, ये बाइबल में भी लिखा है। जब अपने जैसा बनाया तो ठीक है, हम लोग उनके रूप के अनुसार में है, इसलिए उनका रूप है। जो गॉड है GOD, जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर, डी डिस्ट्रक्टर, सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाला है, वही गॉड है। तो उसकी शक्ति यदि नहीं होगी, उसका रूप ही नहीं होगा, तो अपने समान कैसे हम लोगों को बना दिया। इसलिए बाइबिल भी में ऐसा कहा गया है और कुरान में भी ऐसा कहा गया, इन्ना अल्लाह खलाका मिन सूरत ही, खुदा तल्ला ने अपने रूप के समान मनुष्यों को बुलाया बनाया। इसलिए वहां पर भी स्वीकृत है, जो जिसका रूप ही नहीं है उसे कोई चीज पैदा नहीं हो सकता, कभी हो नहीं सकता जिससे पैदा हो जाए। ये जीरो है, इसे कुछ भी पैदा नहीं हो सकता है, सुनने से जगत नहीं हुआ। बौद्ध हमारे भारतवर्ष से निकले, सनातन धर्म से निकले, उन्होंने कहा जे ये जगत शून्य है और शून्य में मिल जाएंगे। समझ नहीं सके हमारे भारतीय परंपरा की, इस चीजों को नहीं समझ सके, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की नहीं की और समाधि किया, इसलिए उनके समाज में कुछ नहीं आया, तो उन्होंने कहा ये जगत ये झूठा है, जगत नहीं मानते, ब्रह्म को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, वेद शास्त्रों को नहीं मानते, इसलिए भारतवर्ष से उनका यह धर्म ही बार कर दिया गया। शंकराचार्य और दूसरे सब आए, कुमारिल भट्ट इत्यादि, वो फिलॉसफी को ही भारत से उड़ा दिया, तो वो कहीं जाकर के चीन जापान और उधर में जाकर के फैले, उधर में फैले फैले, हमारे यहां वो सब करें, जिसका आकार नहीं उसे कैसे कोई चीज पैदा हो सकता है, फ्रॉम नथिंग एनीथिंग कैन नॉट बी क्रिएटेड, नेवर, देयर समथिंग बी देयर बट नॉट समथिंग, कृष्ण इज होल, पूर्ण पूर्णमदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम एव पूर्णम। हमारे भगवान पूर्ण है, सब प्रकार से पूर्ण, उनका रूप है, गुण है, लीला है, शक्ति है, यह सब करने की शक्ति का सामर्थ्य है उनमें, उनसे ये जगत निकला है, इसलिए असत्य नहीं है, जो सत्य वस्तु उसे ये जगत सत्य है, झूठा नहीं है, रामकृष्ण ये सब झूठे नहीं है, हम लोग झूठे नहीं है, हमारी आसक्ति जो उसके प्रति है ये झूठी है, इस चीज को समझो। यदि जगत झूठा है तो तुम्हारा बाप भी झूठा है, तो झूठे जगत में उनको ये प्रचार करने की क्या जरूरत है, यदि सभी कुछ झूठा है तो वो जो व्यक्ति कह रहा है वो भी झूठा है, बौद्ध भी झूठे हैं, उनके बाद सब झूठी है, इसलिए समथिंग ही नहीं, वो पूर्ण तत्व है, उसमें सब कुछ है, वही पूर्ण तत्व, इसी को ये बतला रहे हैं, जो उनको कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, और भगवान कौन है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण ही स्वयं भगवान, यही अनादि हैं, सबके आदि हैं, सनातन हैं, और उन्हीं का अंश ये जीवात्मा इस शरीर में है, उनको भूल करके ये घूम रहा है, दुख को प्राप्त कर रहा है, इसलिए परम धर्म क्या है, उस भगवान की सेवा। देखो शंकर जी सबके आराध्य हैं, जो कुछ मांगो दे देते हैं, अपने क्या पहनते हैं, कुछ नहीं, नंगे, गले में क्या है, मुंडमाला, अंगों में भस्म है, मरे हुए लोगों का राख, और यहां क्या है, जगत पावनी गंगा, तरह तरह वो कटे हुए लोगों का मुंडमाला पहनते हैं, किस लिए, ये सब उल्टा पुल्टा वेशभूषा करके, इसलिए मुंडमाला धारण करते हैं और भस्म धारण करते हैं कि ये जगत की यही रीति है, तुमको भी एक दिन मरना होगा, मरने पर तुम्हारा भी ये सिर खोपड़ी ऐसे ही हो जाएगी, देखो मैं विष खाता हूं माने क्या, अरे तुम विष मत खाओ, मैं तो विष को हजम कर लूंगा, और सिर पर गंगा को धारण करते हैं, भगवान की चरण धौत गंगा को, इसी से जगत में मैं पूज्य हूं, ये चीज दिखलाने के लिए, गोपी बन करके वृंदावन में उनकी सेवा करते हैं, हनुमान बन करके राम की सेवा करते हैं, ये शंकर जी ना? ये दुर्गा जी उनकी शक्ति हैं, जो लोग शंकर की पूजा करते हुए कहते हैं, पहले जब पूजा करते हैं वो लोग कहते हैं क्या, शिवोहम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, रावण भी करता था, कंस भी, और हिरण्यकश्यप इत्यादि सारे क्या कहते थे, ओम नमः शिवाय, पहले तो उन्होंने कहा और फिर अंत में क्या बोले, शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, तो उनके पास में शक्ति खड़ी थी, वो क्या करें, वो शिव हम जो कहने वाले हैं, जो मैं ही शिव हूं, यदि वही शिव हो गए तो हुआ क्या, विचार करो, तब तो ये शंकर जी वो भी इनकी दुर्गा जी के पति हो गए, जब वो शिव बन जाएंगे तो हो जाएंगी ना भारजा, अरे मैं तुम्हारी भारजा नहीं बनूंगी, गले से काट करके रुंडमाला पहन ले, काली रूप धारण करके, इस चीज को सह नहीं सकती जो कोई कह दे जे मैं शिव हूं, इस चीज को अच्छी तरह से समझिए, ना? यदि यहां पर पतिव्रता कोई स्त्री है और दूसरा कोई आदमी कह दीजिए मैं तेरा पति हूं, वो तुम्हारा पति नहीं है, तो क्या करेगी? हाथ में कालिख लगा करके उसके मुख में पोत देगी, यही तो करेगी ना, क्या करेगी? ना? इसलिए ये दुर्गा जी बड़ी वीर हैं, किंतु कोई कह दे जे मैं शिव हूं, हम मैं शिव हूं, नहीं सह सकती। हां कृष्ण कह सकते हैं, कात्यायनी बन करके कृष्ण की सेवा करती हैं। गोपियों के समाज में ये कात्यायनी बनती हैं और उनको कृष्ण भक्ति का वरदान भी देती हैं, इसलिए साधारण रूप में मत समझो। इस तरह से समझो, जिसका रूप ही नहीं है वो क्या क्रिएशन कर सकता, वो भगवान हो ही नहीं सकता है। इसलिए कृष्ण में सब शक्ति है, और जितने देवता हैं शंकर से लेकर के, अरे गणेश कैसे जगत में पूजित हुए। एक समय देवताओं ने कहा जे भाई किसकी पूजा हो आगे, तो उस समय में जो पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा कराएगा वही पूजित होगा। सब देवता लोग कोई कोई शाण पर, कोई कुछ पर, कोई मयूर पर, कोई कुछ कुछ कोई पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकले। गणेश जी बैठ करके रोने लगे, एक तो मैं लंबोदर इतना भार, हमारे सूंड को भी वो चूहा हमारा नहीं उठा सकता, तो मैं इस पर बैठूंगा तो वो कैसे पृथ्वी की जल्दी से परिक्रमा कर लेगा। बड़ी चिंता में खेत में हो करके रो रहे थे। इतने में नारद जी आए, आए क्या बात है, किस लिए रो रहे? तो इसलिए रो रहा हूं भाई, हमारी पूजा नहीं होगी, मैं तो सबसे पीछे पहुंचूंगा। एक बात करो, राम नाम लिखो और इसकी तीन परिक्रमा करके बैठ जाओ चुपचाप। और उन्होंने तीन बार परिक्रमा उस राम नाम लिखा और तीन बार परिक्रमा करके बैठ गए। सब देवता लोग आए तो उन्होंने कहा जी मैं फर्स्ट आया, कोई कहा जी सेकंड आया, कोई थर्ड आया, तो सीरियल नंबर से उनकी पूजा होगी। तो ये हुआ जैसे निर्णय किया जाए ये कौन किसकी पूजा आगे होगी। तो नारद जी वहां पर थे, भृगु आ गए और बड़े बड़े लोग विचारों का है। अंत में कहा एक राम के अंदर में सारा विश्व, अखंड विश्व ब्रह्मांड कोटि कोटि इसके अंदर में है। राम नाम लिख करके उसकी परिक्रमा कर दी तो उसकी सारी परिक्रमा पूरी हो गई, इसी की पूजा होगी। तो जिसके नाम पर गणेश जी की पूजा होती है, तो इन लोगों की पूजा करें, किंतु उनसे प्रार्थना करें कि इनके चरणों में, कृष्ण के चरणों में हमारी रति हो, यही परम धर्म है, इससे बढ़कर के परम धर्म नहीं है। देखो गणेश जी का तो वृंदावन में प्रवेश नहीं, और की बात छोड़ो, हनुमान जी का भी प्रवेश नहीं है, शंकर जी भी हैं तो कैसे गोपी का रूप धारण करके वृंदावन में प्रवेश किए। इसीलिए इन सब की महिमा, कृष्ण की महिमा समझो जी, कृष्ण क्या है। तो इसलिए शास्त्र में ऐसा कहते हैं, इसलिए भारतवर्ष में यह बहुत पहले ही, आज नहीं कोटि कोटि वर्षों पहले, पहले सृष्टि में उन लोगों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने इस चीज को निर्णय लिया। यहां तक कि कृष्ण अपने मुख से, अपने नाक के श्वास से वेद इत्यादि सब उसे प्रकट हुए, उसमें ये सब बातें हैं। इसलिए हमारा वेद भी नित्य सनातन है, वो कागज का पुड़िया नहीं है जो कि जला दिया जाए, वो ज्ञान है। गीता हमारा, ये गीता या भागवत कहते हैं ये नहीं है, इसमें अक्षरात्मक रूप में है, वो ज्ञान तत्व है, उसको कोई जला नहीं सकता, मोहम्मद गोरी उसे छू नहीं सकते, और जितने हुए हैं उनको कोई स्पर्श नहीं कर सकता है, इतनी ऊंची से। ये कभी कभी कलयुग में कभी कुछ ढक सा जाता है, कोई महात्मा आने पर ऐसा प्रभावशाली, या भगवान का अवतार होने पर, फिर वो विकसित हो जाता है। इसलिए सनातन है, दो वस्तुएं सनातन है, एक क्या सनातन है, भगवान। डंके की चोट में समस्त गीता भागवत उपनिषद में कहा गया कि कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान से। और भी बतलाया है गीता में भी, हमसे बढ़कर के और कोई परतत्व है ही नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति, कुछ भी बढ़कर के नहीं है। और भी सर्वधर्मान प्रत्यजमामि एकम शरणम व्रज कहा, इसलिए यही परम धर्म है कि भगवान के प्रति प्रेम हो, कृष्ण के प्रति प्रेम हो। एक नाम भी उनका उच्चारण यदि अनजान में भी हुआ, आपके सारे संकटों को दूर कर देगा। यदि कोई संकट हो और जोर से उसे पुकारिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, उसका पहला आदि अक्षर हरे ये उच्चारण होते हैं, उसके सारे संकट जरूर हटेंगे ही, जरूर हट जाएगा। परीक्षा करके देखो, यदि कोई संकट में पड़ा हो और द्रौपदी की भांति दोनों हाथों को उठा करके पुकारो, जे तुम्हारे अतिरिक्त और हमारी कोई गति नहीं है, हमारी रक्षा करें, तो सारी क्लेशों को भी दूर कर देते हैं। इसलिए वो साधारण नहीं है। इसलिए श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त आत्मनि चात्मानं सुत भक्ति गृहीतया। इसलिए जो मुनि लोग वो ज्ञान वैराग्य से युक्त अपने गुरु जी से सुन करके भगवान के चरणों में भक्ति करते हैं। साधारण रूप में हम समझते हैं कि पुष्प लिया और गणेश जी के दरवाजे पर या शंकर जी के चौकटे पर रख करके उनको निवेदन करके दो पैसे का बताशा धूप बत्ती एक ले लिया और एक बत्ती लेकर के पूजा कर दी, हे गणेश जी हे शंकर जी मैं बहुत दुख में हूं, हमारा ये दुख दूर कर दीजिए, 15 वर्ष हो गए हमें लड़के कोई संतान नहीं है, एक संतान हमें दे दीजिए, हमारी लड़की का एकमात्र लड़की का आप पति बीमार है और मरने वाला है, आप जल्दी से हमारी रक्षा कीजिए, ये सब प्रार्थना करते हैं। ये भक्ति नहीं है, ये क्या है, भगवान को प्रसन्न के लिए करते हैं और भगवान प्रसन्न भी हो सकते हैं, किंतु ये अपने लिए है, इसलिए भक्ति नहीं है। आयत की होनी चाहिए बिना किसी कारण के, तो भगवान के चरणों में ऐसी भक्ति हो जाएगी, उसका कुछ फल मिलेगा, नहीं तो ऐसे फल नहीं मिलता, साधारण रूप में फल मिलते हैं। इसलिए श्रृण्वतांग स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो यभद्राणि विधुनो सुहिष्यताम। भगवान कृष्ण तो ऐसे हैं, उनकी लीला कथाएं ऐसी हैं, जो लीला कथाएं सुनता है बड़े प्रेम के साथ में, उनको उनके हृदय में कानों से प्रवेश कर जाते हैं स्वयं भगवान कथा के रूप में, और उसके हृदय को निर्मल कर सकते हैं। जैसा कोई एक बंधु होता है, मित्र होता है, अपने किसी मित्र के घर में गया तो देखा जे उसका चेयर और टेबल गंदा पड़ा हुआ है, धूल पड़ी हुई है, उसने दो एक बार अपने मित्र को दरवाजे पर पहुंच करके पुकारा तो वो आने में देरी हुई, तो अपने रुमाल पॉकेट से निकाल करके उसको झाड़ करके उस पर बैठा। क्या तात्पर्य, भगवान हमारे ऐसे बंधु और मित्र हैं कि यदि कोई किसी प्रकार से भगवान की कथा सुना, जैसे सुन रहे हैं आप लोग, तो कथाओं के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर हृदय में बहुत तरह की आवर्जनाएं मैला भरा पड़ा हुआ है, सांसारिक आसक्तियां इसके अंदर में है, बड़ा भारी कठिन है इसको हटाना, तरह तरह के डिजायर्स हैं, बुरी कामनाएं हैं, हमारे शत्रुओं का विनाश हो जाए, ये अच्छी बात तो नहीं विनाश होना, हमारे शत्रुओं का विनाश हो, हम जो चाहते हैं वो पूर्ण हो जाए। इसलिए भगवान उन सब चीजों को हटा करके उसके हृदय को निर्मल करके उसमें बैठते हैं। फिर नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवाया, जो इस स्थिति में भी जब उसका हृदय निर्मल होने लगता है, उस समय में भगवान की जो कथाएं सुनता है, भागवत की कथा सुनता है। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक भगवान का सेवक और एक जिसमें भगवान की लीला कथाएं हैं। तो अभी जो हम कर रहे हैं ये लीला कथा वाली भागवत है, और उसमें उसमें पढ़ करके उसके गंभीर विचारों को अनुभव करके जो व्यक्त करते हैं वो महाभागवत है, परम भागवत। उन्हीं के हाथों में ये चाबी है। ऊपर से भागवत पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसे महाभागवतों की सेवा करने से ही वो समझ में आएगी। गीता तो हम रोज पढ़ते हैं, किंतु अर्जुन जैसा होता क्यों नहीं? गोकर्ण ने भगवान की कथा यही भागवत सुनाई, और पहले वो धुंधकारी ही की का उद्धार हुआ, उसके लिए विमान आया और स्वर्ग ले गया, बाकी के लिए नहीं हुआ। उन्होंने पूछा ये बाकी लोगों के लिए, हमारे लिए विमान नहीं आया, तो आपने उसके समान श्रवण नहीं किया, 7 दिन तक खाया नहीं और कथा सुनता रहा निविष्ट चित्त से, इसलिए उसके लिए आया। आप लोगों ने इस तरह से नहीं सुना, खाना पीना दुर्किनार करके, दूर करके शुद्ध चित्त से, एकाग्र चित्त से नहीं श्रवण किया। उसको विश्वास था जब भगवान की कथाओं को सुनने से हृदय जरूर पवित्र हो जाए, इसलिए उसका हो गया, हम लोगों का नहीं हुआ। तब फिर से उन्होंने कथा बांची, और उस कथा में सब लोगों ने बिना खाए पिए व्रत लेकर और तब श्रवण किया, उस विश्वास के साथ में फिर सभी लोगों लोग चले गए, बैकुंठ को पधारे। इसलिए एक भक्ति होती है निष्ठा युक्त, और एक ही होती है अनिष्ठिति। यह बहुत लंबा इतिहास है, इसलिए हम आगे ही चल रहे हैं। ऐसी कथाओं को सुनने से हृदय की ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं। ग्रंथियां क्या है? आसक्ति। आसक्ति की एक कहानी सुनेंगे। कलकत्ते के निकट में गंगा नदी बहती है, गंगा के किनारे कचरा पाड़ा कोई स्थान है, शहर है, तो वहां पर एक रईस रहते थे, उनके लड़के की शादी थी और जाना था कलकत्ते में विवाह। करीब करीब 24 घंटा नौका से जाने से, नौका के पथ से, उस समय और दूसरा कोई पथ नहीं था, तो वो नौका एक ठीक किया, किराए पर लिया, बहुत बड़ी नाव, और उसमें नीचे बहुत सजा हुआ, ऊपर में पानी भी यदि वर्षा हो तो दूर हो जाए, और सब तरह की सुविधाएं थी उसमें। दुल्हा के साथ में सारे बराती बैठे, खाने पीने का सब सामान लिया गया। सवेरे 4 बजे भोर में साइत थी विवाह की, उसके पहले पहुंचना है। नाविकों ने कहा जो खेते हैं, उन्होंने कहा जी हमको कुछ पैसे चाहिए, हम लोगों को कुछ ले करके खाना है, गांजा और भांग नहीं पीने से हम लोग काम नहीं कर सकते, इसलिए गांजा भांग इत्यादि कुछ चाहिए या शराब चाहिए। ठीक है, उनके लिए पैसे दे दिए और वो लोग पी करके नौका चलाने लगे, और यहां पर नाच गान होने लग गया। बाई जी भी आकर के नाचने लगी, पहले ये भारत में रीति थी, अब तो ये हट गया। तो बाई जी नाचने लगी और सब लोग देखने लगे, कोई शराब भी पी रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। जब सवेरा होने को आया 3 बजे 4 बजे के करीब, तो मालिक खुद बर का पिता ऊपर गया, देखा ये सारी ये नाव कहाँ है, अब तो हम लोग कलकत्ते पहुंचने वाले होंगे या पहुंच ही गए होंगे। किंतु उसने देखा जी हमारा गांव जहां था एक नारियल का पेड़ था, वही पर हम हैं और वही घाट। तो बड़ा वो क्रुद्ध हुआ और नाविकों को बुला करके डांटने लगा, तुमने क्या किया, अभी हम अपने गांव में हैं? तो नहीं हजूर, आप हम गांव में नहीं, अब तो कलकत्ते पहुंच ही गए हैं, अब तो देखो, तो देखो तो सचमुच में तो वही गांव है, नारियल का पेड़ वही है, और वही हमारा मकान है। हजूर हम लोगों ने तो नौका खूब चलाई बड़ी जोर से और रात भर नौका चली, किंतु क्या कारण है नहीं समझ सके। उन्होंने कहा लंगर उठाया कि नहीं, लंगर जानते हैं नाव में होती है, बड़ी बड़ी जहाजों में होती है, है? एंकर, उसको तो उठा करके नाव में रखा नहीं, इसलिए नाव क्या कर ये लोग चला रहे हैं और वो घूम रही है लंगर के चारों तरफ में, किंतु आगे नहीं बढ़ रही। तो हम लोग साधन भजन कुछ करते भी हैं, भगवान का नाम भी करते हैं, किंतु सांसारिक आसक्तियों को रख करके करते हैं, इसलिए एक इंच भी नहीं बढ़ पाते। लंगर को उठाओ पहले, ये उठेगी कैसे, तुम नहीं उठा सकते, ये तो उसका काम है जो इस विषय में एक्सपर्ट हो, इसी का नाम गुरु तत्व है, जो जानते हैं आसक्ति कैसे ली जा सकती है और उसको भगवान के चरणों में सौंपी जा सकती है, यही परम धर्म है। ये शुद्ध गुरु के बिना अपने आप नहीं हो सकता, चाहे लाखों जन्म चले जाएं, ना? इसलिए भिद्यते हृदय गिनती, ये हृदय की गांठ है। जितने तरह की सुख भोगों की लालसा है, सेंस ग्रेटिफिकेशंस हैं, ये गांठें हैं। जब तक गांठें रहेंगी तब तक भाई चित्त में प्रसन्नता नहीं आएगी, भगवत भक्ति नहीं होगी। ये 100 बातों की एक बात समझ लीजिए, इसलिए इस प्रकार से चलिए जिससे कि ये शुद्ध भक्ति हो। इस प्रकार से ये शुद्ध भक्ति के संबंध में कल या परसों हम व्याख्या के साथ में बतलाएंगे जो शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं, उदाहरण के साथ में, जिसको अच्छी तरह से आप लोग समझ सकते हैं। थोड़े से गुरु तत्व के संबंध में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। जरा एक कीर्तन कर दीजिए छोटा सा, तो चुलबुला कीर्तन सब लोग। इस कल्प में तृतीय युग सत्य द्वापर और त्रेता, सत्य त्रेता और द्वापर, द्वापर के अंत में पराशर जी के पुत्र व्यास जी का जन्म हुआ, भगवत अंश से हुआ, भगवान के सत्तावसात, उनको कलावतार भी कहते हैं। वो वृंदावन और मथुरा के बीच में उनका जन्म हुआ, जमुना के बीच में, इसलिए उनको कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। उन्होंने जितने प्रकार के कर्म हैं, कर्मों का हमारे शास्त्रों में पुराणों में निरूपण किया, वेदों को विभाग किया, ऋग साम जजु अथर्व वेद, पुराण पंचम वेद, इतिहास महाभारत इत्यादि का भी प्रणय किया। उसमें एक एक विभाग करके एक एक अपने शिष्यों को दिया, पैल, जैमिनी, सुमंत, वैशंपायन, एक एक विभाग करके दिया। और सुत गोस्वामी लोमहर्षण सुत को उन्होंने इतिहास रामायण इत्यादि का गुरु बनाया। वे इतने कृपावत्सल हैं कि स्त्रियों के लिए जो पवित्र नहीं रह सकती मासिक धर्म इत्यादि के वजह से, शूद्रों के लिए और जो पतित ब्राह्मण हैं उनके लिए महाभारत की रचना की। इस प्रकार से सारे कर्मों को उन्होंने किया, सारे विद्याओं को, ये सब प्रकाश किया। जितने प्रकार के धर्म हैं नीचे से ऊपर तक सबका प्रकाश किया, अंतर्यामी हैं। तथापि भारत व्यपदेशेन ही अमनायाश्च दर्शति, वे संतुष्ट नहीं हो सके। वेदांत सूत्र को भी रचना उन्होंने की। वेदों में जो चीजें ऐसे लगती हैं, जो कहीं कहा गया जो भगवान का रूप नहीं है, फिर कहते हैं कि भगवान का रूप है, ऐसे ऐसे जो गंभीर विषय हैं, उनका समाधान किया शंकाओं का, वह है वेदांत सूत्र। ये करने पर भी वह संतुष्ट नहीं थे। वे सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए कुछ चिंता कर रहे थे, खेद के साथ। मैंने इतना सब कुछ किया और सारा विश्व हमारे लिखे हुए धर्म के अनुसार में चल करके सुखी और शांति पाता है, किंतु हमारा चित्त प्रसन्न क्यों नहीं है, संतुष्ट क्यों नहीं है, चित्त में खेद हो रहा है। क्या मैंने शुद्ध भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया? क्या हमारे कुछ लिखने में त्रुटि रह गई जो मैं लिख ले नहीं सका? भगवान को पाने के लिए जितने उपाय हैं हमने भरसक तो लिखा, तो कुछ मालूम होता है कि छूट गया है, मैं नहीं कर सका, इसलिए मेरा मन शायद खिन्न। और इसी करते 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 वहीं पर नारद ऋषि आए। ये नारद ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, किंतु ब्रह्मा जी से भी ऊंची पदवी वाले हैं, शक्ति रखते हैं। ब्रह्मा जी बैकुंठ में नहीं जा सकते, और ये बैकुंठ गोलोक जहां है सब जगह सर्वत्र वो जा सकते हैं, सर्वत्र इनकी गति है, सब कुछ जानते हैं, प्राणियों के हृदय में भी रहते हैं। वो वहां पर उपस्थित हुए, मुनि को प्रणाम करके ये बैठे, और जब बैठे तो देवर्षि ने उनसे पूछा, ओह आपने सब कुछ जगत में शास्त्रों का प्रणयन किया, आपके अनुसार में धर्म कर्म चल रहा है हमारे भारतवर्ष का, आपका मन खिन्न क्यों है, प्रसन्न क्यों नहीं है? व्यास जी बोले, अस्तेव में सर्वविदम तयोक्तम, आपने जो कुछ कहा वो ठीक है, मैंने वेदों का विभाग किया, ब्रह्मसूत्र का निर्माण किया, उपनिषदों को भी प्रकाशित किया, और कर्म धर्म सभी हमने प्रकाशित किए, सबकी उपासना की बात मैंने कही, तभी मेरा चित्त अभी खिन्न है, प्रसन्नता नहीं है, सब कुछ करने पर भी मेरी समझ में नहीं आता जे कहां मेरा रोग है। आप प्रधान वैद्य शिरोमणि हैं इस विषय के, आप रोग का निर्णय करके हमें बतलाइए, ये क्या मेरे अंदर में कमी रह गई जो मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है। आप लोग स्वयं देख करके विचार करके देखिए। एक बचपन का जीवन था, बड़ा सुहावना था, मैया के गोद में अपने भाइयों और बहनों के गोद में किलकारी भरता हुआ, कभी रोता कभी खुश होता हुआ बड़े आराम से रहता। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी तब तब मर्ज बढ़ी। इसके बाद में विद्या अध्ययन इत्यादि सब डिग्री प्राप्त सब किया, नौकरी चाकरी कर दी, चाहता था जो सुंदर स्त्री के साथ मेरी शादी भी हो जाए, वो भी हो गई, कहीं नौकरी अच्छी लग जाए, नौकरी भी बड़ी सुंदर अच्छी लग गई जो दूसरों के लिए नहीं है, तो अभी सुखी है नहीं। बेटे चाहिए, बेटे भी हो गए, बेटियां भी हो गई, उनकी शादी भी कर दी, तो अभी सुखी नहीं। वो समझता नहीं ये कैसे मैं सुखी, सुखी होने के लिए सारी चेष्टाएं की, अंत में बूढ़ा हो गया, मरने को आया, सब प्रॉब्लम वहां पर छाए हुए, सुखी नहीं रह सका। इसलिए नारद जी के पास में व्यास जी ने ऐसे ही कहा, आपने जो कहा वह सब ठीक है, और मैंने सब धर्मशास्त्रों में मैंने दूसरों के लिए लिखा, तभी मैं नहीं जानता जो हमारा मर्ज क्या है। क्यों हमारा चित्त संतुष्ट नहीं है, कुछ रह गई है ऐसी चीज, आप कृपा करके हमारे ऊपर, रोग क्या है, कहां हमारी कमी रह गई, इसको बतलाइए। तो उन्होंने उत्तर दिया, ठीक, भवतानुदित प्रायम जसो भगवतो अमलोम जैनावासो न तुष्यत मने तद दर्शनम अखिलम, तुमने शास्त्रों में धर्म के लिए लिखा, किंतु परम धर्म के संबंध में तुमने कुछ नहीं लिखा। कैसे लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, ये तो तुमने लिखा धर्म कर्म के संबंध में। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके लिए तुमने लिखा, तो जो लिखना चाहिए था वो नहीं लिखा। आपने गड़बड़ी और कर दी। आपने तो किया लोगों के उपकार के लिए, आपने कहीं शास्त्रों में शंकर जी की महिमा बढ़ाते हुए उनको कहा ये स्थिति प्रलय करने वाले हैं। जब गणेश जी की महिमा लिखी राशि पुराणों में, तो उन्होंने गणेश जी को ही सबसे बड़ा बनाया। जब दुर्गा इत्यादि के लिए लिखा मार्कंडेय पुराण इत्यादि, तो उसमें दुर्गा जी की इतनी महिमा बनाई, वो सबकी माता यही है, जगत की सृष्टि करने वाली है। एक स्थिर सिद्धांत आपने नहीं दिया, ये जगत का मूल कर्ता कौन है ये नहीं दिया। दूसरी बात, आपने एक गलती और की, विश्व ब्रह्मांड के सृष्टा और रचयिता और पालन करने वाले ईश्वरों को भी ईश्वर के ईश्वर मूल ईश्वर कृष्ण है आपने स्पष्ट रूप से कहीं नहीं लिखा। और ये ईश्वर प्रेम के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं, और प्रेम से वशीभूत हो कृषि के बालक बन जाते हैं, किसी के सखा बन जाते हैं, और उनकी चरणों की सेवा करते हैं, अपनी मैया बाप की सेवा करते हैं, और गोपियों के चरण को पलोटते हैं। आपने कहीं लिखा ये प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, भगवत्ता को भी भूल जाते हैं, ये आपने नहीं लिखा। प्रेम ही आराध्य है, कृष्ण का मिलना आराध्य नहीं है। कृष्ण को तो कंस भी मिला, जरासंध भी मिला, किंतु शत्रु भाव से देखा। पूतना और अगासुर बकासुर सभी मिले, किंतु कृष्ण का प्रेम नहीं रहने के वजह से सब असुर के रूप में रहे और कृष्ण को मारना चाहा। यही प्रेम कृष्ण ने कृष्ण लीला में दिखलाया। गोपियों के लिए कहते हैं, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सका, न हो सकता हूं। तुमने हमारे लिए सर्वस्व कुछ त्याग कर दिया है, अपने पतियों का त्याग किया, अपने भाई बंधुओं का त्याग किया। जो लज्जा त्याग नहीं की जा सकती, उस लज्जा को भी तुमने त्याग कर दिया, अर्थ को त्याग कर दिया, गुरु के वचनों को भी, जो गुरु के समान माता पिता सास ससुर है उनके बातों को भी तुमने नहीं सुना, और हम सबको छोड़ करके हमारे पास में आई है। ऐसा मैं नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारा चिर ऋणी हूं। सचमुच में यह बात ठीक है, कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा की, जो जैसा हमारी आराधना करता है मैं उसके अनुसार ही फल देता हूं। बात तो ठीक है, किंतु गोपियों के सामने वो भूल गए, नहीं पूरा कर सके। गोपियां सर्वस्व छोड़ करके आई थी, सबको छोड़ करके आई थी। कृष्ण ऐसा कर सकते हैं, अपने किसी भक्त को छोड़ नहीं सकते। जसोदा मैया को छोड़ देंगे, नंद बाबा को छोड़ देंगे, या किसी एक गोपी को भी छोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि सारे दूसरों लोगों के ऋणी हो जाएंगे। और गोपियों से कहेंगे, जैसे तुम कुछ बर मांग लो, तो बर ये दो जो तुम्हारी अपनी सेवा दे दो, तो इससे भी कृष्ण और ऋणी हो गए, पूरा नहीं कर सकते। ये लिखा आपने वृंदावन के कुंज वनों में, वो राधिका जी के पैरों को पलोटते हैं, ये लिखा लौटता है ना, ब्रह्म में ढूंढो वेदत पुराणन, वेदों और पुराणों में मैंने ब्रह्म को ढूंढा, जे ब्रह्म वो कहां है। शास्त्रों में ढूंढा, सर्वत्र ढूंढा, किंतु वो ब्रह्म नहीं मिला। कहां मिला? वृंदावन के कुंज वनों में राधिका जी के पैरों को पलोटता हुआ मैंने उस पर ब्रह्म को देखा। लिखा ये सब? कृष्ण के विरह में गोपियां तड़फ रही हैं। जब वो मथुरा द्वारका चले गए, तो गोपियों ने कोई दूत भेजा ना, कृष्ण ने दूत भेजा, किसने भेजा? जिसको गरज है वो भेजे। गोपियों को गरज था जो भेजे, गोपियों ने कोई दूत नहीं भेजा, न स्वयं गई। कृष्ण ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार दूत भेजा। उद्धव को भेजा पहले, फिर बलदेव जी को भेजा, फिर द्वारका में सो छोड़ करके यहां गए, कुरुक्षेत्र में गोपियों से ही मिलने के लिए गए। इसलिए प्रेम के वशीभूत हैं कृष्ण, हैं सबके मूल, समस्त ईश्वरों के ईश्वर, जगदीश्वर हैं, किंतु होने पर भी प्रेम के वशीभूत होते हैं, ऐसा कोई भी नहीं। हाँ, रामचंद्र जी बड़े दयालु हैं, ठीक है ना, बड़े दयालु। सीता जी ने कौन सा दोष किया जो दो दो बार उन्होंने घर से निकाल दिया? कोई कारण था उनको घर से निकालने? यदि आपकी स्त्री को आपकी खूब सेवा प्रायणा है और एकांत रूप में आपकी सेवा करती है, दूसरे को मन से भी नहीं छूती, और स्त्री को जबरदस्ती कोई पकड़ करके कहीं ले जाए, तो आप इस फिर स्त्री को आप यदि फिर ले आए तो उसे छोड़ देंगे? मैं तो नहीं छोड़ सकता, आप लोग भले ही छोड़ सकते हैं। तो सीता जी का दोष क्या था? रावण यदि जबरदस्ती उसको पकड़ करके ले गया तो क्या दोष था? था तो राम ने क्यों उसको छोड़ दिया सीता जी को? एक धोबी के कहने से, वही प्रमाणिक व्यक्ति था, बतलाओ तो। इसलिए हम लोग राम से डरते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी तो छोड़ देंगे। अरे दूसरी बार क्या किया? सीता जी की अग्नि में परीक्षा हुई, देवताओं ने, ब्रह्मा ने, यहां तक कि महाराज दशरथ जी आकर के बोले ये सीता पवित्र है, इसको ग्रहण करो। ग्रहण किया, और जब लौट करके आए, कितने हजार वर्ष तक जब राज्य किया, तो कहीं से वो धोबी ने कुछ कहा और सदा के लिए घर से उनको निकाल दिया। ये कहां किसी भले मानुष का काम है? इसलिए हम लोग डरते हैं, कहीं थोड़ी सी गलती चूक हो गई तो वो कहीं घर से निकाल देगा। जब सीता को निकाल देता तो हमारी और आपकी तो बात ही क्या रहे, जरा खूब सावधान रहेंगे, थोड़ी सी भी गलती ना हो ना? ये सब चीजें भागवत आपने कहीं लिखा तो नहीं? अरे कभी नृसिंह जी ने राष्ट्र रचाया है? बराहदेव जी ने ना? नृसिंह भगवान ने राष्ट्र रचाया। सीता जी के पैरों में यदि बन जाने के समय में कोई कांटा चुभ गया पैर में, रामचंद्र जी निकालेंगे कि नहीं? और सीता जी निकालने भी नहीं देगी, और राम निकाल भी नहीं सकते, और कृष्ण क्या करेंगे? अपने कंधे पर रख करके बड़े प्यास के साथ में निकाल लेंगे। राधा जी कहेंगी हमारे पैर राश में नित्य करते करते थक गए हैं। अच्छा, नूपुर भी छटक करके कहीं गिर पड़ा है, जल्दी से लेकर के पहनाओ। बस कृष्ण आज्ञाकारी दास की भांति करेंगे। ये है प्रेम, ये भागवत का आपने नहीं लिखा। इसलिए परम धर्म क्या है? ऐसे जो प्रेमी कृष्ण हैं, भगवत्ता की सीमा है, प्रेम की चरम सीमा है, भूल जाते हैं अपने ब्रह्मत्व को, भगवत्ता को भूल जाते हैं। यशोदा जी के बंधन को भी यशोदा मैया उनको बांध देती है ना, बांध देती है, और लठिया लेकर के कहती मारूं बंदर बंधो, चंचल, चोर, नटखट, धूर्त, ये कह देती। कौशल्या जी कह देंगी ना, लक्ष्मी जी कह देंगी, कोई भी नहीं कह सकता। और कृष्ण इनको सुनेंगे, ब्रह्मा जी की स्तव स्तुति को दरकिनार कर देते हैं, हटा देते हैं, नहीं जरूरत नहीं। और ये गोपियों की गाली सुनने के लिए मचलते हैं, कुछ नटखट फन कर देते हैं जिससे कि गोपियां हमको गाली दें। ये सब कहीं लिखा तो नहीं? फिर ध्यान करो, समाधि योग से बैठो, भक्ति का अवलंबन करके, संपूर्ण रूप से शरणागत हो जा करके, मंत्र के द्वारा प्रचोदयात, जैसे आप हैं वैसे ही हमारे हृदय में उपस्थित हो। गायत्री में भी यही, जितनी भी गायत्रियां हैं, काम गायत्री है, गोपाल मंत्र है, ब्रह्म गायत्री है, सबका मूल तात्पर्य है ब्रह्मा। भगवान से प्रार्थना हम करते हैं कि आप अपनी शक्ति प्रदान कीजिए, आप जैसे हैं वैसे हमारे हृदय में उदित हो, इसका नाम है भक्ति, शरणागत होना पहला उसका। और संपूर्ण रूप से शरणागत होकर के उससे प्रार्थना कीजिए, जरूर सुनेगा, ये हमारे व्यास जी बैठ गए, स्नान किया, आचमन किया, बैठ गए, संपूर्ण रूप से भगवान के चरणों में अपने को समर्पण कर दिया। मैं आपकी लीलाओं का दर्शन करना चाहता हूं जो कभी नारद जी ने उपदेश दिया। प्रभु आप कृपा करके अपनी लीलाओं का हमारे हृदय में प्रकाश कीजिए। थोड़ी देर के बाद में उन्होंने देखा, अपश्यत पुरुषम पूर्णम भक्ति युगेन मनसी सम्यक प्रणहिते मले, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच जद अपाश्य। भक्ति के बल से उन्होंने परम पुरुष ब्रह्म को, कृष्ण को देखा। और जितनी लीलाएं हमने कही जन्म से लेकर और द्वारका की पूरी लीला तक, संपूर्ण रूप को जैसे हम फिल्म में देखते हैं ऐसे उन्होंने परिपूर्ण रूप से साक्षात रूप में कृष्ण को लीला करते हुए पूरी देखा। और फिर उसको सुन करके जस्या वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूपपद्यते पुंसः शोक मोह भया, उन्होंने ये श्रीमद् भागवत का संकलन किया। इसको समाधि भाषा कहते हैं, उनकी अपनी लिखी हुई नहीं। समाधि में भगवान की जो लीलाएं आई बस उसी को उन्होंने लिख दिया अक्षर के रूप में। यह भक्ति के द्वारा हम भी देख सकते हैं, इसलिए आज तक भी लोग साधन करते हैं, करोड़ों लोग साधन करते हैं। हम लोग भी आज 81 वर्ष की उम्र तक हैं। अनुभव यदि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं समझते, कुछ अनुभूति नहीं होती तो हम रहते इसमें प्रसन्न चित्त होकर के, संसार से विरक्त होकर के, ये संभव पर नहीं था। कुछ लोग कुछ दिनों के लिए नकल कर सकते हैं किंतु सब समय के लिए नहीं, इसलिए वो छोड़ करके फिर चले जाते हैं। और जिसको रस मिलता जाता है, भगवान की कथाओं में अनुभूति और उसमें रुचि होती जाती है, वो आगे बढ़ता चला जाता है। अभी आप लोगों को थोड़ी थोड़ी रुचि हो रही है, धीरे धीरे सुनते सुनते हृदय में भगवान आएंगे, हृदय को निर्मल कर देंगे, सांसारिक आसक्ति कट जाएगी, फिर इस जगत से दूसरे जगत में कुछ अच्छे जन्म में हो जाएंगे, वहां पर और सुनेंगे, सदगुरु मिलेगा ऐसा रसिक तत्वज्ञ। और फिर धीरे 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 जब हृदय कृष्ण में लग जाएगा उसमें ब्रज में कहीं जन्म होगा और जन्म होकर के कृष्ण लीलाओं का दर्शन साक्षात रूप में होगा। यही क्रम है। इस मनुष्य जन्म को अब अवहेला से न गवाइए। अब इसको अच्छी तरह से, इसका एक एक मिनट भी बर्बाद न हो, भोगों में मत लगिए। बहुत भोग किया है, कुत्ते गधे घोड़े सुअर ये सब बने हुए हैं लाखों बार, कभी देवता कभी ब्रह्मा तक बन गए, चित्त नहीं भरा। अब मनुष्य जन्म फिर भगवान ने कृपा करके दिया, इस जन्म में केवल भगवान की अनुभूति के लिए ही हम लगाएंगे और किसी काम के लिए। वो गुरु गुरु नहीं है जो कृष्ण की भक्ति के लिए नहीं कहता है? जो गुरु होकर के या पिता होकर के, माता होकर के, बंधु होकर के, पति होकर के भी कृष्ण की भक्ति से वंचित रखता है, वहां जाने नहीं देगा जहां हरि कथा होगी, तो उसका जीवन अंधकारमय है। उस पाप के कारण वो उसको बड़ी दुर्गति होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने अपने भाई को, पिताजी को, भरत जी ने अपनी मैया को प्रत्याग कर दिया, बलि महाराज ने अपने गुरु को भी छोड़ दिया, मत इसको दो, ये सब कुछ बामन ले लेगा तो तुम क्या लेकर के रहेगा। उन्होंने अपने गुरु को छोड़ दिया, भरत ने अपनी मैया कैकेयी को जीवन भर के लिए छोड़ दिया, इसको पीछे हम बतलाएंगे। इसलिए हमारा परम धर्म है, यदि परम धर्म करते हैं तो उसमें यदि कुछ छोड़ना भी है संसारिक धर्म तो उसमें कोई हानि नहीं। तक्ता है ना, यदि वर्णाश्रम धर्म को छोड़ करके भगवान का भजन करते हैं तो उसमें कोई भी अनिष्ट नहीं है। और यदि अपना स्वधर्म तो पालन किया, संसार का पति पुत्र और ये सब संसार के प्रति, तो आपका क्या क्या लाभ होगा? कुछ भी लाभ नहीं हुआ। और ये सबको छोड़ करके ध्रुव प्रहलाद की भांति सबको छोड़ करके भी भगवान का भजन करते हैं, मीराबाई को ले लीजिए अभी कुछ दिन ही हुआ, तो क्या होगा? यदि अपक्व अवस्था में भी आप गिर गए पूरा रूप से भजन नहीं कर सके तो अभी कोई हानि नहीं है, कोई भी आपसे त्रुटि हो गई ये सब त्रुटि नहीं है, आपका मंगल ही मंगल होगा। इस चीज को अच्छी तरह से समझ करके इस जीवन में तो भगवान का भजन कीजिए, सबको अनुकूल बना करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए आगे बढ़िए। यही आज के पाठ का ये सार तात्पर्य है। कल हम इसके विषय में भक्ति के संबंध में और कुछ आगे बतलाएंगे, आज यहीं तक रहे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां। प्रश्न है? हाँ हाँ तो कीजिए, एक सुनाओ कृष्ण का भजन।
मनतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके।
अच्छे कल हमने बतलाया गुरु तत्व के संबंध में किस प्रकार से भगवान के कलावतार व्यास भी नहीं समझ सके, जो मेरा चित्त क्यों दुखी है, संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा है। फिर गुरु के नारद जी के आने के बाद में नारद जी ने बताया आपका चित्त इसीलिए दुखी है क्योंकि इतना शास्त्र प्रणयन करने पर भी बनाने पर भी आपने भगवान स्वयं भगवान की लीला कथाओं का वर्णन नहीं किया। आप भक्ति योग से चित्त को समाधिस्थ कीजिए और उसमें सारी लीलाओं को आप दर्शन कर सकेंगे, फिर उसका वर्णन कीजिए। उनके चले जाने के बाद में समाधि भक्ति योग के द्वारा समाधिस्थ हुए और उन्होंने कृष्ण की बाल्यकाल से लीला लेकर और अंत तक उन्होंने दर्शन किया। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत संहिता को मनाया जिसके श्रवण करने से शोक मोह भय सब दूर हो जाता है और भगवान की भक्ति होती है। इसी भक्ति योग के संबंध में भक्ति योग क्या है इसके संबंध में मैं बतला रहा हूं। खूब ध्यान से सुनना, चित्त इधर उधर मत करना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। खूब सावधानी से, बच्चों से सावधान रहो, तुम्हारा ध्यान न ले लें पूरा। खूब एकाग्र चित्त से सुनो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। भक्ति योग किसको कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को जो तुरंत मरने वाले हैं उनको बतलाया।
भक्ति योगस्य लक्षणम ही भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम अहेतुक का व्यवहिता जात्मा संप्रसिद्धति। मतलब परम पुरुष जो हैं उनके चरणों में अहेतु की भक्ति हो, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के, और वह कैसी हो, तैल धारावत अविच्छिन्न गति से लगने वाली हो, कहीं वो ब्रेक न करे, तो इसको भक्ति कह सकते हैं। इसको अच्छी तरह से समझिए। जब तन से, मन से, वचन से, सारी इंद्रियों से जो भगवान ने दिया है, सारी इंद्रियों से और इसके ऊपर में मन से, मन की भावनाओं से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, जिनमें कर्म ज्ञान इत्यादि जो कि कोई भी मिलावट नहीं होती, तो इसको भक्ति कहते हैं। अब इसको उदाहरण के साथ में समझेंगे जो कैसे कहते हैं। एक आदमी यदि तन से, मन से, वचन से और निरंतर रह करके यदि भगवान का ये चिंतन करता है, तो उसको कोई समय रहेगा कि नहीं संसार के ये सब कामों को? नहीं रहेगा। जो कुछ करता है, वट एवर ही डज फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्ण, कृष्ण की प्रीति के लिए ही वो सब कुछ करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या, ये सब चीजें भी वो भगवान के लिए ही फिर होने लगता है। उसके कर्म क्या हैं? उसके कर्म कैसे होते हैं? वैष्णव के सेवन में, भगवान के सेवन में निरंतर, ऐसा कोई काम ही नहीं करेगा जिससे कृष्ण प्रसन्न हो, ये विचार करके करेगा कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं, ये विचार करके करेगा। जिससे भगवान और भगवान के भक्त जो हैं उनके परिकर हैं उनकी प्रीति हो, यदि वो प्रीति नहीं हो रही है इससे, तो उस काम को हम छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, चाहे जैसा भी जो कुछ कर्म हो। इसमें दृढ़ भाव रखना होगा, अपनी प्रसन्नता के लिए मैं उनकी सेवा कर रहा हूं, ये भक्ति नहीं हुई। अपने किसी संसारिक लाभ के लिए, प्रतिष्ठा के लिए यदि करेंगे, संसारिक अपने किसी सुख के लिए अपना भजन करेंगे, तो वो भक्ति नहीं है। जैसे ध्रुव जी का, उन्होंने भगवान की भक्ति की, भगवान का दर्शन भी पाया, किंतु उनकी भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। क्यों किया? अपने लिए किया या भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया? अपने सुख के लिए, अपने राज्य के लिए किया, इसलिए शुद्ध भक्ति नहीं है। फिर भगवान के दर्शन के बाद में उनको अफसोस हुआ, मैंने ये व्यर्थ क्यों किया, भगवान को प्रसन्न किया, उनके दर्शन भी हुए और उन्होंने 36,000 वर्ष के लिए राज्य दे दिया, हमारा समय सब खो गया, है मैं क्यों मांगा? तब उनको ये तो सब नष्ट हो जाने को है, इसे भगवान की तो प्रीति हुई नहीं, अपने लिए नहीं, अपने लिए मांगा, तब उनको अफसोस हुआ, तब फिर भक्ति आई। ये भक्ति आती है कैसे? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति इत्यादि। किसी प्रकार से संसार में भ्रमण करते 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 लाखों करोड़ों जन्मों के बाद में यदि किसी प्रकार से कोई भी काम ऐसा हो गया जो भगवान और भक्तों के संबंधी हो, जैसे हमको देश देखने की बड़ी इच्छा होती है, तो घूमते घूमते हम वृंदावन में चले गए, वृंदावन में जाकर के काली अदह को देखा जहां काली को दहन किया था, केशी घाट में चले गए, वहां पर रासलीला जहां पर वो बंसी बट में चले गए, जमुना जी में स्नान किया, आचमन किया, ये हो गई सुकृति। इच्छा तो नहीं थी, गए भक्तों के संग में ऐसा हो गया। कोई भक्त आ गया, उसके विचारों को देख करके और हमारी कुछ श्रद्धा हुई तो हमने उनकी सेवा कर दी, एक ग्लास पानी पिला दिया या उनकी बात सुनी, बस शुक्रिया हो गई। इससे श्रद्धा हृदय में उत्पन्न होती है। श्रद्धा क्या? भगवान की भक्ति करने से, कृष्ण की भक्ति करने से, राम की भक्ति करने से एक ही चीज, हमारा जीवन सफल हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी दृढ़ विश्वास जिनके हृदय में हो जाता है, इसका नाम है श्रद्धा। भगवान को भजन करने की एक इच्छा जो होती है, ये इच्छा वैष्णव लोग दिया करते हैं, ये इस जगत की चीज नहीं है। और इस भगवान की सेवा करने से हमारा जीवन संपूर्ण रूप से सफल हो जाएगा, ये उसके हृदय में भर देते हैं। कर तो नहीं पाता, किंतु अब वो समझ गया है भगवान की सेवा से ही हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तब मन नहीं लगता है, तो रुचि नहीं होने पर भी फिर भी सुनता है, हरि कथा में जाता है, जैसे यहां पर आते हैं लोग, ये पूर्व पूर्व जन्म की सुकृति से होता है। फिर यही धीरे 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 हमारे जो अनर्थ हैं, संसारिक भोगों में आसक्ति, ये धीरे धीरे कमने लगती है। फिर एक दिव्य दृष्टि आती है विचार करने का, जो मैं जो कुछ कर रहा हूं यही तक नहीं, इसके आगे बहुत कुछ है। ये तो जो अभी कमा रहे हैं खा रहे हैं, ये नहीं जाएगा हमारे साथ में, नहीं जाएगा, ये सबको छोड़ करके जाना है। विल हैव टू गिव अप एवरीथिंग, यू कैन टेक ए सिंगल हेयर इवन व्हाट यू आर कलेक्टिंग इन दिस वर्ल्ड, ओ दे कैन नॉट मेक यू हैप्पी, नेवर एंड नेवर एंड नेवर। इसलिए वो विचार अब आने लगता है धीरे धीरे। संसार के में जो अटैचमेंट था वो धीरे, आप समझते नहीं है, किंतु धीरे धीरे कमने लगता है। मैं क्या करूं, कैसे हमारा चित्त प्रसन्न हो, कैसे हमको शांति आए, पैसा खूब है और शांति नहीं है तो फिर किस काम का, ऐसे सब विचार आने लगे। फिर इसके बाद में नाम करने में रुचि आएगी, भगवान की सेवा करने में, भक्तों की सेवा करने में, और ये हरि कथा में रुचि आने लगेगी। ऐसी रुचि आएगी जो जम्भाई नहीं आएगी, उस समय में इच्छा नहीं होगी जो इसको छोड़ करके उधर में जाए, ऐसी रुचि होने लगेगी हरि कथाओं में, हरि नाम में। अभी सुनने में हो सकता है रुचि नहीं है तो जम्भाई आएगी, नींद भी आने लगेगी, रुचि नहीं होगी तो भी जोर से सुनना चाहिए, इधर आइए, आगे आ जाइए, तो इधर में आ जाइए। इसके बाद में रुचि आएगी, फिर आसक्ति आएगी, किए बिना रहा नहीं जाएगा। इसके बाद में और ऊपर में आसक्ति के बाद में बैठिए, आइए और ऊपर में, इधर में आइए और ऊपर में, यदि नीचे चेयर में बैठने की इच्छा हो तो चेयर में बैठ जाएंगे, कोई असुविधा हो तो ये आसक्ति तक हुई। इसके बाद में शुद्ध भक्ति आती है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते, भरत जी भी इस चीज को समझ नहीं सके, और की तो बात क्या। भक्ति किसको कहते हैं शुद्ध, और प्रेम शुद्ध किसको कहते हैं, यह राम के चरित्र समय में आप लोगों को बतला रहा हूं, जिससे कि आप लोग सहज ही में समझेंगे कैसे। रामचंद्र जी का अभिषेक होने वाला है और उसी समय में भरत शत्रुघ्न अपने मामा के यहां थे और वशिष्ठ जी ने जल्दीबाजी की, महाराज दशरथ जी ने भी, और दूसरे दिन ही चैत्र मास के नवमी को बहुत ही शुभ दिवस था जो वर्ष भर में नहीं था, बस आसपास के लोग जो थे उन्हीं को निमंत्रण किया, दूसरे को नहीं, यहां तक कि भरत शत्रुघ्न को भी बुलाने की का समय नहीं हुआ और राज्य तिलक उनका डिक्लेयर कर दिया गया, दूसरे दिन राज्य तिलक होने वाला था। कैकेयी जी ने कुछ वर पिता उनसे अपने पति से मांग लिए, इनको 14 वर्ष तक के लिए भरत जी राजा हों और 14 वर्ष तक राम वन में रहें। 14 वर्ष के लिए क्यों? इतने में भरत का राज्य दृढ़ हो जाएगा, सारी प्रजाएं इनके तरफ में हो जाएंगी, फिर राम वन ही में रहेंगे। इस चालाकी से किया। इसके बाद में राम लक्ष्मण भरत वन के लिए पधारे। भरत जी को पीछे मालूम हुआ, वशिष्ठ जी ने बुलाया, वो देख करके ये सब सुन करके अपनी मैया के प्रति बड़े बिगड़े और कहा, मैं तुम्हें आज भी मार डालता किंतु राम हमारे प्रति क्रोधित हो जाएंगे, इसलिए मार नहीं रहा, किंतु आज से तुम्हारा और हमारा बेटा और मैया का, मैया और बेटा का संबंध समाप्त सदा के लिए, जीवन भर के लिए, अब ये नहीं जुड़ सकता, अब से आप महारानी कैकेयी हैं और मेरी मैया नहीं, छोड़ दिया। और उनको राम को मनाने के लिए जयराम ही राजा रहे, वे चित्रकूट में पहुंचे थे, वहां पर पहुंचे, अपने सारे मंत्री मंडल को लिया, वशिष्ठ जी को लिया, दोनों माताओं को साथ लिया, तो कैकेयी जी भी रोने लगी, कौशल्या के पास में गई, बहन हमको भी साथ में ले लो, मैं राम को लाने की चेष्टा करूंगा करूंगी, हमको ले चलो, भरत नहीं लेगा, अब मुझे मैया नहीं कहता, मुझे अब भेंट नहीं करता, कहे चलो बहन, उनको लिया, सारी सेनाओं को लिया, चतुरंगणी सेना, और लेकर के चले। जब गंगा को पार किया, प्रयाग में आए, यहां पर कि वाल्मीकि जी का आश्रम था और उनके शिष्य भरद्वाज जी का भी आश्रम था, रामचंद्र जी भी वहां पर ठहरे थे, वहां पर एक दो दिन ठहर कर और फिर चित्रकूट में पधारे। उनको आते देख करके लक्ष्मण जी ने देखा, ये भरत आ रहा है, सेना के साथ में क्यों आ रहा है? पेड़ में चढ़ करके देखा, धनुष बाण लिया, उतरे, आज भरत को और उसकी सारी सेनाओं को संहार कर दूंगा, ये जीवन भर के लिए कंटक मिट जाएगा, मैंने पहले ही महाराज दशरथ को और भरत को मारना चाहा था किंतु राम ने हमें मना कर दिया, इस बार नहीं छोड़ूंगा, ये हमें मारने के लिए, भाई को मारने के लिए और यहां पर आ रहे हैं सेनाओं के साथ। जब उतर करके धनुष बाण लिया तो राम ने पूछा, ये धनुष बाण किसके लिए? तो भरत के लिए। राम ने कहीं अफसोस न करना पड़े तुम्हें, सोच करके क्रोध को अपने होश में रखना चाहिए, जो क्रोध को अपने होश में नहीं रखता उसको बड़ा दुख होता है, ये समस्त संहार का मूल है, पापों का मूल है। पहले देखो तो परीक्षा करके लक्ष्मण कि वो भरत जी किस लिए आ रहा है समझो, उसे बात करो, इसके बाद में ऐसा करना। उनके कहने से मन तो गए और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। भरत जी जब चित्रकूट में पहुंचे, अपनी सेनाओं को नीचे ही रख दिया और केवल वशिष्ठ जी के साथ में, वशिष्ठ जी को भी नहीं, अकेले शत्रुघ्न को साथ लेकर के चित्रकूट के ऊपर में अभी भी वो स्थान है, वहां पर पहुंचे। और साष्टांग प्रणाम करके डकर डकर करके रोने लगे, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, आप तुरंत लौटिए और अयोध्या का राज्य आप ले लीजिए। बहुत तो रोने लगे और ऐसी बात बोले। अब लक्ष्मण जी समझे जो राम कह रहे थे, भरत के समान में और कोई भी नहीं है भक्तिमान हमारे प्रति, आज समझे। अब वो रोने लगे, लक्ष्मण जी हमारे अपराध हुए भरत जी के चरणों में, इसलिए वैष्णव की कोई भी चर्चा मत करो, चर्चा मैंने उसका समालोचना निंदा मत करो, हो सकता है कि तुम गलती हो गए, और अधिकांश रूप में गलती ही हो सकते हैं। वैष्णव के भाव बड़े ऊंचे होते हैं, बड़े वो परम उदार होते हैं, दूसरों का दुख नहीं देना चाहते। इसलिए तुम बिना समझे ये जो किया लक्ष्मण जी ने, अब उसके लिए प्रायश्चित कर रहे हैं, पश्चाताप रो रहे हैं, ये मैंने बहुत भूल की हमने। इसके बाद में माताएं आई, वशिष्ठ जी आए, और उस समय में बस एक ही बात थी, कैसे राम को मना करके ले जाऊं और वहां का राज्य दे करके मैं उनकी सेवा करूं। भरत जी के अंदर में क्या चीज है, अपने तन से मन से वचन से चाह रहे हैं कि राम की सेवा हो, ये भक्ति है। किंतु अभी पूरी उत्तम भक्ति नहीं है, कुछ और भी चीजें हैं। इसी समय में महाराज जनक वहां पर पधारे, उन्होंने सुना कि भरत अभी चित्रकूट में गया है, हमारे भाई भी वहीं पर हैं, सीता जी भी वहीं पर हैं, हमारी बेटी है, मेरी बेटी वहीं पर है, इसलिए ममता उनको और उनकी पत्नी को अनुसुईया सुनैना जी को उनको भी खींच लाई, देखे क्या होता है, भरत गया है क्या करता है, उसका हृदय कैसा है। जब वो पहुंचे तब तक शाम हो गई है। भरत जी सबसे कह रहे हैं, मैया कौशल्या के पास में गए, मैया देखो राम तुम्हारी बात को कभी भी ठेल नहीं सकते, जरूर उनको मालूम पालन करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मैया हो, जो कहेगा वो जरूर करेगी। तुम एक बार राम से कह दो कि राम अयोध्या में लौट जाएं और राज्य ले लें और मैं उनकी सेवा करूं। कौशल्या जी बोली, मैं कैसे ये कह सकती हूं, तो मैं कैसे नहीं कह सकती, तुम क्या मैं ये धर्म के विपरीत बोल रहा हूं, नहीं तो धर्म का विपरीत नहीं कह रहे हो, तुम कहते रहे हो ठीक, किंतु पिता का आदेश पालन करने के लिए तो आया है, मैं कैसे कहूं ये पिता का आदेश न माने, इसलिए मैं नहीं कह सकती। बहुत चेष्टा की किंतु उन्होंने नहीं माना, मैं कैसे कहूं ये धर्म के विपरीत वो काम करे, राम भी तो धर्म ही के ऊपर, तो मैं क्या धर्म कर रहा हूं, नहीं बेटा तुम भी धर्म ही में, तुमसे बड़ा कौन धर्म कर सकता है। थोड़ी देर के बाद में फिर वो महाराज वशिष्ठ के यहां गए, जे गुरु जी सबकी बात राम अस्वीकार कर सकते हैं, किंतु आपकी बात को कभी अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए आप राम को कह दीजिए कि वे अयोध्या लौट जाएं और उसका राज्य ले लें, मैं उनकी सेवा करूं। कहते भाई देखो, मैं ऐसा कहने से मेरे लिए असंभव है, क्योंकि राम भी तो अपने पिता और माता दोनों का आदेश पालन करने के लिए आया है, मैं कैसे कहूं जो अपने पिता की बात को उल्लंघन करके तुम अपराध करो, मैं ऐसा तो कह नहीं सकता। हाँ एक बात हो सकती है, क्या तुम उनके बदले में यदि बन चले जाओ तो मैं उनसे कह सकता हूं कि भरत आपके बदले में जा सकता है, आप लौट जाइए। भरत जी ने कहा यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी, इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा। कि भरत जी ने कहा जी मैं इसके लिए एकदम अभी राजी हूं, जब पिताजी के आदेश के पालन करने के लिए उनके बदले मैं प्रतिनिधि होकर के जाऊंगा और वो राज वहां का लेकर के आराम के साथ सीता जी के साथ में लक्ष्मण जी के साथ में उनके सुकुमार पैरों से कैसे जा सकते हैं, मुझको बड़ा ही कष्ट होता है, बहुत ही कष्ट। किंतु बात बनी नहीं, उन्होंने विचार करके फिर देखा और इतने में वो आ गए महाराज जनक। वशिष्ठ जी ने कहा देखो कभी कभी हमारी मति भ्रम हो जाती है, क्योंकि राम के साथ में रहा ना, इसलिए उसके प्रति प्रीति होने के कारण में हमारी इच्छा तो कभी कभी होती है जय राम आ जाए, किंतु महाराज भरत संसार में रहते हुए भी संसार से अलग है, संसार के प्रति तनिक भी आसक्ति नहीं है, इसलिए उनको कहते हैं क्या विदेह, देह ही नहीं है। घर में राजभवन में और वे चुपचाप भगवत चिंतन कर रहे हैं। किसी ने कहा जी आग लग गई, कैसे लग गई ये नहीं पूछा, तो आग लग गई तो फिर जैसा होगा वो होगा, अपना भगवत चिंतन कर रहे हैं और फिर वो आग बुझ गई। इनको कोई भी तो चिंता नहीं, न उठ करके गए न कुछ, होना वही होगा जो होना है, इसके लिए चिंता कौन करे, हम ऐसा नहीं कर सकते, आप लोग नहीं कर सकते, हम लोग कुछ कर भी सकते हैं आप लोग नहीं कर सकते, थोड़ा सा कोई कष्ट होगा बिलबिलाने लग जाएंगे। और यही जनक का है, संसार को जानते हैं जे क्या है, उसका संबंध रहने पर भी वो जानते हैं कि एक आदमी मर जाने पर भी वो मरता नहीं है आत्मा।
ज्ञानंजनशलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव प्राक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके।
अच्छे
कल हमने बतलाया गुरु तत्व के संबंध में, किस प्रकार से भगवान के कलावतार व्यास भी नहीं समझ सके जो मेरा चित्त क्यों दुखी है, संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा है। फिर गुरु के नारद जी के आने के बाद में नारद जी ने बताया आपका चित्त इसीलिए दुखी है क्यों, इतना शास्त्र प्रणयन करने पर भी बनाने पर भी आपने भगवान स्वयं भगवान की लीला कथाओं का वर्णन नहीं किया। आप भक्ति योग से चित्त को समाधिस्थ कीजिए और उसमें सारी लीलाओं को आप दर्शन कर सकेंगे, फिर उसका वर्णन कीजिए। उनके चले जाने के बाद में समाधि भक्ति योग के द्वारा समाधिस्थ हुए और उन्होंने कृष्ण की बाल्यकाल से लीला लेकर और अंत तक उन्होंने दर्शन किया। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत संहिता को मनाया, जिसके श्रवण करने से शोक मोह भय सब दूर हो जाता है और भगवान की भक्ति होती है। इसी भक्ति योग के संबंध में, भक्ति योग क्या है इसके संबंध में मैं बतला रहा हूं। खूब ध्यान से सुनना, चित्त इधर उधर मत करना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। खूब सावधानी से, बच्चों से सावधान रहो, तुम्हारा ध्यान न ले लें पूरा। खूब एकाग्र चित्त से सुनो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। भक्ति योग किसको कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को, जो तुरंत मरने वाले हैं, उनको बतलाया। भक्ति योगस्य लक्षणम ही भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम अहेतुक का व्यवहिता जात्मा संप्रसीदति। बतलाया, परम पुरुष जो हैं उनके चरणों में अहेतु की भक्ति हो, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के। और वह कैसी हो? तैल धारावत अविच्छिन्न गति से लगने वाली हो, कहीं वो ब्रेक न करे। तो इसको भक्ति कह सकते हैं। इसको अच्छी तरह से समझिए। जब तन से, मन से, वचन से, सारी इंद्रियों से, जो भगवान ने दिया है सारी इंद्रियों से, और इसके ऊपर में मन से, मन की भावनाओं से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, जिनमें कर्म ज्ञान इत्यादि जो कि कोई भी मिलावट नहीं होती, तो इसको भक्ति कहते हैं। अब इसको उदाहरण के साथ में समझेंगे जो कैसे कहते हैं। एक आदमी यदि तन से, मन से, वचन से और निरंतर रह करके यदि भगवान का ये चिंतन करता है, तो उसको कोई समय रहेगा कि नहीं संसार के ये सब कामों को? नहीं रहेगा। जो कुछ करता है, व्हाटएवर ही डज फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्ण, कृष्ण की प्रीति के लिए ही वो सब कुछ करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। कर्म ज्ञान योग तपस्या ये सब चीजें भी वो भगवान के लिए ही फिर होने लगता है। उसके कर्म क्या हैं? उसके कर्म कैसे होते हैं? वैष्णव के सेवन में, भगवान के सेवन में निरंतर, ऐसा कोई काम ही नहीं करेगा जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। ये विचार करके करेगा कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं, ये विचार करके करेगा। जिससे भगवान और भगवान के भक्त जो हैं, उनके परिकर हैं, उनकी प्रीति हो। यदि वो प्रीति नहीं हो रही है इससे, तो उस काम को हम छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, चाहे जैसा भी जो कुछ कर्म हो। इसमें दृढ़ भाव रखना होगा, अपनी प्रसन्नता के लिए मैं उनकी सेवा कर रहा हूं, ये भक्ति नहीं हुई। अपने किसी सांसारिक लाभ के लिए, प्रतिष्ठा के लिए यदि करेंगे, सांसारिक अपने किसी सुख के लिए अपना भजन करेंगे, तो वो भक्ति नहीं है। जैसे ध्रुव जी का, उन्होंने भगवान की भक्ति की, भगवान का दर्शन भी पाया, किंतु उनकी भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। क्यों किया? अपने लिए किया या भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया? अपने सुख के लिए, अपने राज्य के लिए किया, इसलिए शुद्ध भक्ति नहीं है। फिर भगवान के दर्शन के बाद में उनको अफसोस हुआ, मैंने ये व्यर्थ क्यों किया? भगवान को प्रसन्न किया, उनके दर्शन भी हुए और उन्होंने 36,000 वर्ष के लिए राज्य दे दिया, हमारा समय सब खो गया है, मैं क्यों मांगा? तब उनको ये तो सब नष्ट हो जाने को है, इसे भगवान की तो प्रीति हुई नहीं, अपने लिए नहीं, अपने लिए मांगा। तब उनको अफसोस हुआ, तब फिर भक्ति आई। ये भक्ति आती है कैसे? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति इत्यादि। किसी प्रकार से संसार में भ्रमण करते 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 लाखों करोड़ों जन्मों के बाद में यदि किसी प्रकार से कोई भी काम ऐसा हो गया जो भगवान और भक्तों के संबंधी हो, जैसे हमारे हमको देश देखने की बड़ी इच्छा होती है, तो घूमते घूमते हम वृंदावन में चले गए, वृंदावन में जाकर के काली अदह को देखा जहां काली को दहन किया था, केशी घाट में चले गए वहां पर रासलीला, जहां पर वो बंसी बट में चले गए, जमुना जी में स्नान किया, आचमन किया, ये हो गई सुकृति। इच्छा तो नहीं थी, गए भक्तों के संग में ऐसा हो गया। कोई भक्त आ गया, उसके विचारों को देख करके और हमारी कुछ श्रद्धा हुई तो हमने उनकी सेवा कर दी, एक ग्लास पानी पिला दिया या उनकी बात सुनी, बस शुक्रिया हो गई। इससे श्रद्धा हृदय में उत्पन्न होती है। श्रद्धा क्या? भगवान की भक्ति करने से, कृष्ण की भक्ति करने से, राम की भक्ति करने से एक ही चीज, हमारा जीवन सफल हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ऐसी दृढ़ विश्वास जिनके हृदय में हो जाता है, इसका नाम है श्रद्धा। भगवान को भजन करने की एक इच्छा जो होती है, ये इच्छा वैष्णव लोग दिया करते, ये इस जगत की चीज नहीं है। और इस भगवान की सेवा करने से हमारा जीवन संपूर्ण रूप से सफल हो जाएगा, ये उसके हृदय में भर देते हैं। कर तो नहीं पाता, किंतु अब वो समझ गया है भगवान की सेवा से ही हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तब मन नहीं लगता है, तो रुचि नहीं होने पर भी फिर भी सुनता है, हरि कथा में जाता है, जैसे यहां पर आते हैं, ये पूर्व पूर्व जन्म की सुकृति से होता है। फिर यही धीरे 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 हमारे जो अनर्थ हैं, संसारिक भोगों में आसक्ति, ये धीरे धीरे कमने लगती है। फिर एक दिव्य दृष्टि आती है विचार करने का, जो मैं जो कुछ कर रहा हूं यही तक नहीं, इसके आगे बहुत कुछ है, ये तो जो अभी कमा रहे हैं खा रहे हैं ये नहीं जाएगा हमारे साथ में, नहीं जाएगा, ये सबको छोड़ करके जाना है। विल हैव टू गिव अप एवरीथिंग, यू कैन टेक ए सिंगल हेयर इवन व्हाट यू आर कलेक्टिंग इन दिस वर्ल्ड, ओ दे कैन नॉट मेक यू हैप्पी, नेवर एंड नेवर एंड नेवर। इसलिए वो विचार अब आने लगता है धीरे धीरे, संसार के में जो अटैचमेंट था वो धीरे, आप समझते नहीं है किंतु धीरे धीरे कमने लगता है, मैं क्या करूं, कैसे हमारा चित्त प्रसन्न हो, कैसे हमको शांति आए, पैसा खूब है और शांति नहीं है तो फिर किस काम का, ऐसे सब विचार आने लगे। फिर इसके बाद में नाम करने में रुचि आएगी, भगवान की सेवा करने में, भक्तों की सेवा करने में, और ये हरि कथा में रुचि आने लगेगी, ऐसी रुचि आएगी जो जम्भाई नहीं आएगी, उस समय में इच्छा नहीं होगी जो इसको छोड़ करके उधर में जाए, ऐसी रुचि होने लगेगी हरि कथाओं में, हरि नाम में। अभी सुनने में हो सकता है रुचि नहीं है तो जम्भाई आएगी, नींद भी आने लगेगी, रुचि नहीं होगी, तो अभी जोर से सुनना चाहिए, इधर आइए, आगे आ जाइए, तो इधर में आ जाइए। इसके बाद में रुचि आएगी, फिर आसक्ति आएगी, किए बिना रहा नहीं जाएगा। इसके बाद में और ऊपर में आसक्ति के बाद में बैठिए, आइए और ऊपर नहीं, इधर में आइए, और ऊपर में यदि नीचे चेयर में बैठने की इच्छा हो तो चेयर में बैठ जाएंगे, कोई असुविधा हो तो। ये आसक्ति तक हुई, इसके बाद में शुद्ध भक्ति आती है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते, भरत जी भी इस चीज को समझ नहीं सके, और की तो बात क्या। भक्ति किसको कहते हैं शुद्ध, और प्रेम शुद्ध किसको कहते हैं, यह राम के चरित्र से मैं आप लोगों को बतला रहा हूं, जिससे कि आप लोग सहज ही में समझेंगे कैसे। रामचंद्र जी का अभिषेक होने वाला है, और उसी समय में भरत शत्रुघ्न अपनी मामा के यहां थे, और वशिष्ठ जी ने जल्दीबाजी की, महाराज दशरथ जी ने भी, और दूसरे दिन ही चैत्र मास के नवमी को, बहुत ही शुभ दिवस था जो वर्ष भर में नहीं था, बस आसपास के लोग जो थे उन्हीं को निमंत्रण किया, दूसरे को नहीं, यहां तक कि भरत शत्रुघ्न को भी बुलाने की का समय नहीं हुआ, और राज्य तिलक उनका डिक्लेयर कर दिया गया, दूसरे दिन राज्य तिलक होने वाला था। कैकेयी जी ने कुछ वर पिता उनसे अपने पति से मांग लिए, इनको 14 वर्ष तक के लिए भरत जी राजा हों और 14 वर्ष तक राम वन में रहें। 14 वर्ष के लिए क्यों, इतने में भरत का राज्य दृढ़ हो जाएगा, सारी प्रजाएं इनके तरफ में हो जाएंगी, फिर राम वन ही में रहेंगे। इस चलाकी से किया। इसके बाद में राम लक्ष्मण भरत वन के लिए पधारे, भरत जी को पीछे मालूम हुआ, वशिष्ठ जी ने बुलाया, वो देख करके ये सब सुन करके अपनी मैया के प्रति बड़े बिगड़े और कहा, मैं तुम्हें आज भी मार डालता, किंतु राम हमारे प्रति क्रोधित हो जाएंगे, इन्हें मार नहीं रहा, किंतु आज से तुम्हारा और हमारा बेटा और मैया का, मैया और बेटा का संबंध समाप्त, सदा के लिए, जीवन भर के लिए, अब ये नहीं जुड़ सकता, अब से आप महारानी कैकेयी हैं और मेरी मैया नहीं, छोड़ दिया। और उनको राम को मनाने के लिए जय राम ही राजा रहे, वे चित्रकूट में पहुंचे थे, वहां पर पहुंचे, अपने सारे मंत्री मंडल को लिया, वशिष्ठ जी को लिया, दोनों माताओं को साथ लिया, तो कैकेयी जी भी रोने लगी, कौशल्या के पास में गई, बहन हमको भी साथ में ले लो, मैं राम को लाने की चेष्टा करूंगी, हमको ले चलो, भरत नहीं लेगा, अब मुझे मैया नहीं कहता, मुझे अब भेंट नहीं करता, कहे चलो बहन, उनको लिया, सारी सेनाओं को लिया, चतुरंगणी सेना, और लेकर के चले। जब गंगा को पार किया, प्रयाग में आए, जहां पर कि वाल्मीकि जी का आश्रम था और उनके शिष्य भरद्वाज जी का भी आश्रम था, रामचंद्र जी भी वहां पर ठहरे थे, वहां पर एक दो दिन ठहर कर और फिर चित्रकूट में पधारे। उनको आते देख करके लक्ष्मण जी ने देखा, ये भरत आ रहा है, सेना के साथ में क्यों आ रहा है, पेड़ में चढ़ करके देखा, धनुष बाण लिया, उतरे, आज भरत को और उसकी सारी सेनाओं को संहार कर दूंगा, ये जीवन भर के लिए कंटक मिट जाएगा। मैंने पहले ही महाराज दशरथ को और भरत को मारना चाहा था, किंतु राम ने हमें मना कर दिया, इस बार नहीं छोड़ूंगा, ये हमें मारने के लिए, भाई को मारने के लिए यहां पर आ रहे हैं सेनाओं के साथ। जब उतर करके धनुष बाण लिया तो राम ने पूछा, ये धनुष बाण किसके लिए? तो भरत के लिए। राम ने कहीं अफसोस न करना पड़े तुम्हें, सोच करके क्रोध को अपने होश में रखना चाहिए, जो क्रोध को अपने होश में नहीं रखता उसको बड़ा दुख होता है। ये समस्त संहार का मूल है, पापों का मूल है। पहले देखो तो परीक्षा करके लक्ष्मण कि वो भरत जी किस लिए आ रहा है, समझो, उसे बात करो, इसके बाद में ऐसा करना। उनके कहने से मन तो गए और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। भरत जी जब चित्रकूट में पहुंचे, अपनी सेनाओं को नीचे ही रख दिया और केवल वशिष्ठ जी के साथ में, वशिष्ठ जी को भी नहीं, अकेले शत्रुघ्न को साथ लेकर के चित्रकूट के ऊपर में अभी भी वो स्थान है, वहां पर पहुंचे और साष्टांग प्रणाम करके डकर डकर करके रोने लगे। मैं आपके बिना जी नहीं सकता, आप तुरंत लौटिए और अयोध्या का राज्य आप ले लीजिए। बहुत तो रोने लगे और ऐसी बात बोले। अब लक्ष्मण जी समझे जो राम कह रहे थे, भरत के समान में और कोई भी नहीं है भक्तिमान हमारे प्रति, आज समझे। अब वो रोने लगे, लक्ष्मण जी हमारे अपराध हुए भरत जी के चरणों में, इसलिए वैष्णव की कोई भी चर्चा मत करो, चर्चा मैंने उसका समालोचना निंदा मत करो, हो सकता है कि तुम गलती हो गए, और अधिकांश रूप में गलती ही हो सकते हैं। वैष्णव के भाव बड़े ऊंचे होते हैं, बड़े वो परम उदार होते हैं, दूसरों का दुख नहीं देना चाहते, इसलिए तुम बिना समझे ये जो किया लक्ष्मण जी ने, अब उसके लिए प्रायश्चित कर रहे हैं, पश्चाताप रो रहे हैं, ये मैंने बहुत भूल की हमने। इसके बाद में माताएं आई, वशिष्ठ जी आए, और उस समय में बस एक ही बात थी, कैसे राम को मना करके ले जाऊं और वहां का राज्य दे करके मैं उनकी सेवा करूं। भरत जी के अंदर में क्या चीज है, अपने तन से मन से वचन से चाह रहे हैं कि राम की सेवा हो, ये भक्ति है, किंतु अभी पूरी उत्तम भक्ति नहीं है, कुछ और भी चीजें हैं। इसी समय में महाराज जनक वहां पर पधारे, उन्होंने सुना कि भरत अभी चित्रकूट में गया है, हमारे भाई भी वहीं पर हैं, सीता जी भी वहीं पर हैं, हमारी बेटी है, मेरी बेटी वहीं पर है, इसलिए ममता उनको और उनकी पत्नी को अनुसुईया सुनैना जी को उनको भी खींच लाई, देखे क्या होता है, भरत गया है क्या करता है, उसका हृदय कैसा है ना? जब वो पहुंचे तब तक शाम हो गई है। भरत जी सबसे कह रहे हैं, मैया कौशल्या के पास में गए, मैया देखो राम तुम्हारी बात को कभी भी ठेल नहीं सकते, जरूर उनको पालन करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मैया हो, जो कहेगा वो जरूर करेगी, तुम एक बार राम से कह दो कि राम अयोध्या में लौट जाएं और राज्य ले लें और मैं उनकी सेवा करूं। कौशल्या जी बोली, मैं कैसे ये कह सकती हूं? तो मैं कैसे नहीं कह सकती, तुम क्या मैं ये धर्म के विपरीत बोल रहा हूं? नहीं, तो धर्म का विपरीत नहीं कह रहे हूं। तुम कहते रहे ठीक, किंतु पिता का आदेश पालन करने के लिए तो आया है, मैं कैसे कहूं ये पिता का आदेश न माने, इसलिए मैं नहीं कह सकती। बहुत चेष्टा की किंतु उन्होंने नहीं माना। मैं कैसे कहूं ये धर्म के विपरीत वो काम करे, राम भी तो धर्म ही के ऊपर, तो मैं क्या धर्म कर रहा हूं? नहीं बेटा, तुम भी धर्म ही में, तुमसे बड़ा कौन धर्म कर सकता है। थोड़ी देर के बाद में फिर वो महाराज वशिष्ठ के यहां गए, जे गुरु जी सबकी बात राम अस्वीकार कर सकते हैं किंतु आपकी बात को कभी अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए आप राम को कह दीजिए कि वे अयोध्या लौट जाएं और उसका राज्य ले लें, मैं उनकी सेवा करूं। कहते भाई देखो, मैं ऐसा कहने से मेरे लिए असंभव है, क्योंकि राम भी तो अपने पिता और माता दोनों का आदेश पालन करने के लिए आया है, मैं कैसे कहूं जो अपने पिता की बात को उल्लंघन करके तुम अपराध करो, मैं ऐसा तो कह नहीं सकता। हाँ एक बात हो सकती है, क्या तुम उनके बदले में यदि बन चले जाओ तो मैं उनसे कह सकता हूं कि भरत आपके बदले में जा सकता है, आप लौट जाइए। भरत ने कहा यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी, इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भरत जी ने कहा जी मैं इसके लिए एकदम अभी राजी हूं, ये पिताजी के आदेश के पालन करने के लिए उनके बदले मैं प्रतिनिधि होकर के जाऊंगा और वो राज वहां का लेकर के आराम के साथ सीता जी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में, उनके सुकुमार पैरों से कैसे जा सकते हैं, मुझको बड़ा ही कष्ट होता है, बहुत ही कष्ट। किंतु बात बनी नहीं, उन्होंने विचार करके फिर देखा और इतने में वो आ गए महाराज जनक। वशिष्ठ जी ने कहा देखो कभी कभी हमारी मति भ्रम हो जाती है, क्योंकि राम के साथ में रहा ना, इसलिए उसके प्रति प्रीति होने के कारण में हमारी इच्छा तो कभी कभी होती है जय राम आ जाए, किंतु महाराज भरत संसार में रहते हुए भी संसार से अलग है, संसार के प्रति तनिक भी आसक्ति नहीं है, इसलिए उनको कहते हैं क्या विदेह, देह ही नहीं है, देह रहते हुए भी शरीर नहीं है, आसक्ति नहीं है। किसी समय में आग लगी उनके घर में राजभवन में और वे चुपचाप भगवत चिंतन कर रहे हैं, किसी ने कहा जी आग लग गई, कैसे लग गई ये नहीं पूछा, तो आग लग गई तो फिर जैसा होगा वो होगा, अपना भगवत चिंतन कर रहे हैं और फिर वो आग बुझ गई, इनको कोई भी तो चिंता नहीं, न उठ करके गए न कुछ, होना वही होगा जो होना है, इसके लिए चिंता कौन करे, हम ऐसा नहीं कर सकते, आप लोग नहीं कर सकते, हम लोग कुछ कर भी सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते, थोड़ा सा कोई कष्ट होगा बिलबिलाने लग जाएंगे। और यही जनक का है, संसार को जानते हैं ये क्या है, उसका संबंध रहने पर भी वो जानते हैं कि एक आदमी मर जाने पर भी वो मरता नहीं है, आत्मा कभी नहीं, आत्मा मरती है, इस शरीर को छोड़ करके दूसरी शरीर में चले, जला के आखिर जो जलना था वही जला है जो जल गया था, आ रहा है समझ में, इस शरीर को तो जलना ही है, आत्मा निकल जाएगी फिर उसको जलाना ही है, तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, आत्मा अजर अमर है, उसको आग नहीं जला सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी उसे भिगो नहीं सकता, हवा भी स्पर्श नहीं कर सकती, ऐसी आत्मा है, इसलिए इसके लिए मत समझो जी अर्जुन ये तुमने किसी को मार डाला और उन्होंने तुमको मार डाला, ऐसा कभी होता नहीं है, ये मत समझो जी ये लोग नहीं थे और हम भी नहीं थे और अब हुए हैं और फिर नहीं रहेंगे, ऐसा मत सोचो। गीता का ज्ञान बहुत ही गंभीर है, जिसको गीता का ज्ञान नहीं उसको भक्ति कैसे होगी, बड़ा कठिन है, इसलिए पहले भक्त के लिए उसके पीठभूमि के लिए गीता के उपदेश आवश्यक है। तो महाराज जनक आए, वशिष्ठ जी ने कहा बहुत अच्छा हो गया, वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी के ऊपर में सब कुछ छोड़ दिया जाए, उनके और हाँ राज जनक के ऊपर में। उन्होंने कहा आज नहीं, अब आज तो विश्राम किया जाए, कल सभा होगी और उस सभा में सभी लोग आएंगे और उस सभा में जैसा होगा दोनों पक्षों को सुन करके मैं निर्णय दूंगा। दूसरे दिन विराट सभा हुई, एक तरफ में अयोध्या से जो आए हुए थे वो सब लोग बैठे, माताएं बैठी, और एक तरफ में राम लक्ष्मण सीता जी उधर में बैठे, और एक तरफ में साधु समाज जो वहां पर था जो भगवत भजन करने वाला वो बैठा, वशिष्ठ जी बीच में बैठे। बड़ी विराट सभा हुई। सभा होने के बाद में एक तरफ में भरत जी शत्रुघ्न जी, दूसरे तरफ में राम और लक्ष्मण जी और सीता जी बैठे। वशिष्ठ जी ने कहा जब जब अयोध्या में कुछ विपत्ति आती है, महाराज जनक महाराज दशरथ इसका समाधान करते थे, अब वो तो रहे नहीं, अब दोनों कुलों के पिता ससुर जो कुछ कहिए ये जनक ही हैं। मैं सोचता हूं ये बात ये अच्छी बात रहेगी, इसका निर्णय भर चाहते हैं रामचंद्र जी चलें और वहां का राज्य लें अयोध्या का, और राम इधर पिताजी के आदेश पालन करने पर तुले हुए हैं, इनकी प्रतिज्ञा है, दोनों के बीच में क्या हो इसके लिए निर्णय महाराज जनक देंगे, इसका भार इन्हीं पर अर्पण किया जाता है। मैं इसमें मेरी बुद्धि इस समय मोहित हो रही है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। महाराज जनक जी उठ करके खड़े हुए, वशिष्ठ इत्यादि बड़े बड़े ऋषि थे उनको प्रणाम किया, वाल्मीकि और भरद्वाज इत्यादियों को, और प्रणाम करके बोले मेरी बात मान्य है तुम्हें, यदि मैं कहूंगा निर्णय दूंगा तो आप जो कुछ कह देंगे मैं मानूंगा, आप मेरे पिता भी हैं, राम के भी पिता हैं, हमारे गुरु हैं, उनके गुरु हैं, जरूर मानूंगा। राम से पूछे जे तुम भी हमारी बात हमारे निर्णय को स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, यदि नहीं करते हो तो मैं निर्णय नहीं दूंगा। तो उन्होंने भी कहा कि आप जो कुछ कहेंगे जरूर संपूर्ण रूप से आपके निर्णय को मैं अपने मस्तक पर धारण करके पालन करूंगा। फिर उन्होंने ध्यान लगाया अपने गुरु का, और गुरु का ध्यान लगा करके, उनके गुरु कौन है, शंकर जी, शंकर जी का ध्यान लगाया। लगाने के बाद में आंख खोल करके उन्होंने कहा देखो भरत तुम क्या चाहते हो, तो ये चाहता हूं कि ये अन्याय हुआ है हमारे कुल में, ऊपर से मैं देखता हूं कि बड़ा भाई राज्य का अधिकारी होता है, मेरी मैया ने अन्याय से इस नियम का उल्लंघन कर दिया, मैं नहीं चाहता इस उल्लंघन, रघुकुल की जो रीति है उसी के अनुसार में सब होना चाहिए। तो रामचंद्र जी यथार्थ में इस राज्य के मालिक हैं, महाराज दशरथ हमारे पिता के बाद में, इसलिए राजगद्दी उनको मिलनी चाहिए, वो राजगद्दी को स्वीकार करें, नहीं तो मैं अन्न जल छोड़ करके मैं भी यहीं पर प्राण त्याग करूंगा। राम से पूछा तुम्हारा क्या पक्ष है, हमारा पक्ष यही है कि आप जो आदेश देंगे वही पालन करूंगा, हमारा कुछ भी विचार नहीं, आप कहेंगे जो बीच कहेंगे हम कुछ भी ना और हां कह करके आपके बात को अंगीकार करूं, बड़ी प्रसन्नता के साथ। फिर सोच करके बोले देखो भरत का प्रेम जो है अगाध समुद्र है, प्रशांत महासागर की भांति, प्रशांत महासागर का भी और छोर है, एक तरफ में अमेरिका, एक तरफ में वो चीन और हांगकांग और ये सब हैं, किंतु इसका कोई कुल किलाना नहीं है। प्रशांत महासागर में हो सकता है कि उसका कुछ तले में हो, 5 मील, 6 मील, 7 मील, 8 मील, जरूर कुछ होगा गंभीर। किंतु भरत का प्रेम का कोई और छोर नहीं है, अगाध प्रेम है जिसका था नहीं है। इधर रामचंद्र जी का धर्म के प्रति ऐसी निष्ठा है जो वो हिमालय की भांति है, वो तनिक भी हिल डुल नहीं सकता। आंधी तूफान भले ही पानी में डूब जाए, समुद्र में लहरें आए, उसको हिला डुला नहीं सकती। भले ही डूब जाएगा किंतु टस से मस नहीं होगा। तो मेरा निर्णय यह है कि यहां पर भरत की जीत हुई। क्यों? वो धर्म की जो बात है, नीति है, मर्यादा है, वो पहाड़ के होने के समान भी इस अगाध प्रेम के समुद्र में वो डूब जाएगा, डूब जाएगा। अतः भरत जी के प्रेम में राम का यह धर्म के प्रति जो मर्यादा है, वो डूब जाएगी। प्रेम कोई बंधन स्वीकार नहीं करता। प्रेम के लिए कोई रीति नीति धर्म की जो है वो कुछ नहीं, वो सबको डुबा देता है। क्या नीति है, दुर्नीति है, ये भी नहीं देखता। इसलिए भरत की जीत हुई। किंतु राम मर्यादा है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, हिमालय की भांति डूब तो जाएंगे किंतु वो उसके हिलोरों से इधर उधर टल से मस नहीं होंगे। किंतु देखो भरत, तुम्हारी जीत हुई ठीक है, किंतु प्रेम की भी एक रीति है। क्या रीति? रीति एक है, वो ये प्रेम देखता है कि हमारे जो इष्ट देव हैं वो कैसे प्रसन्न होंगे। ये मत देखो जो तुम कैसे प्रसन्न हो रहे, ये मत देखो, तुम अभी तक एक तरफा देख रहे हो, अपने हृदय में झांक करके देख रहे हो। राम के दुख से तुम दुखी हो, बात ठीक है, तुम समझते हो कि राम दुखी होंगे वन में जाने से, अयोध्या का राज नहीं लेने से, इसलिए तुम बड़े दुखी हो। इसलिए अपने दुख का भार उठाने हटाने के लिए तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही राम से कराना चाहते हो। ये प्रेम की रीति नहीं है। प्रेम की रीति क्या है? तुम्हारा जो इष्ट देव है वो किस विषय में प्रसन्न रहता है, क्या करने से? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? राम क्या चाहता है, उसको पूरा करना है। ये भक्त का कार्य है, ये भक्ति का कार्य है। ये मत देखो जो मैं दुखी हूं इसलिए हम जैसा चाहते हैं वैसा हो। तुम अभी तक अपनी तरफ में झांक करके देख रहे हो, ऐसा होने से अच्छा रहता, मैं सुखी रहूंगा। राम यदि लौट जाएं, राज्य ले लें, तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, मैं उनकी सेवा से प्रसन्न रहूंगा। किंतु ये तुमने देखा कि राम कैसे सुखी होंगे, उनसे पूछा? अतः नहीं पूछा। तो देखो, पूछो, बस गुरु जी के चरणों में गिर गए, बोले जी आपने मेरी आंख खोल दी, अभी तक अपने तरफ में देख रहा था, जयराम को कैसे सुखी बनाऊंगा। किंतु उनसे पूछा नहीं कैसे सुखी वो होंगे। राम के चरणों में गिर गए और बोले जब भैया अब तुम बतलाओ, अब तक मैं स्वार्थी था, अपना स्वार्थ देख रहा था, सब दायित्व उन पर दे दूंगा, मैं निश्चिंत होकर के रहूंगा और सारा दायित्व उन पर रहेगा, इसी से शायद राम प्रसन्न होंगे। किंतु मैंने आपके भावनाओं को समझने की चेष्टा नहीं की। भक्ति में ये चीज है, गुरु भक्ति में ये भी यही चीज है। हमारा गुरु कैसे प्रसन्न होगा उसे, उसके भावों को समझो। यदि नहीं समझ सकते हो तो तुम उनके डिसाइपल नहीं हो, अभी ठीक से कनिष्ठ हो, मध्यम अधिकार में भी नहीं पहुंचा। उत्तम अब तो बहुत उत्तम जो सेवक होते हैं, गुरु जी के भावनाओं को समझ लेते हैं और समझ करके वैसे ही काम करते हैं, इसलिए गुरु प्रसन्न रहता है। उसको अपना उत्तराधिकारी बना करके उसको अपनी सारी भक्ति की संपत्ति उसे सौंप देता है। और जो ऐसे नहीं करते ने? वो कैसे हैं? जो कहने पर करते हैं ये मध्यम कोटि के हैं, और जो कहने पर भी विचार करके करते कर सकूंगा या नहीं, क्या करूं ना करूं, ये कैसे हैं? ये कनिष्ठ। और जो एकदम करते ही नहीं है वो क्या है? वो केवल सेवक नहीं है, से उसमें से निकाल लो, बाकी रह गया क्या? बक। बक माने कपटी, बगुला भगत। जो उत्तम भक्त होगा, सेवक होगा, शिष्य होगा, वो अपने गुरु जी के भावनाओं को समझ लेगा और वैसे ही काम करेगा। अभी तक भरत नहीं समझ रहे थे, अपनी तरफ ही देख कर रहे थे, जो ऐसा करने से सब उत्तरदायित्व नहीं रहेगा, भैया बड़े प्रसन्न होंगे और सब, किंतु वो कैसे प्रसन्न रहेंगे अभी तक नहीं समझ रहे थे। इसलिए आज उनके चरणों में गिर करके उनसे पूछा, भैया मेरी आंखें हमारे गुरुजी ने खोल दी, अब मैं देख रहा, ठीक कह रहे हैं, इसलिए आप कैसे प्रसन्न होंगे ये बतलाइए। राम ने कहा जी तो फैसला हो गया है, भरत की जीत, हमारे जनक, हमारे पिताजी ने, पिता ही तो लगते लगेंगे, उन्होंने कह दिया है कि भरत की जीत हो गई, इसलिए तुम्हारी जीत हो गई। तुम्हारी तो यही थी ना कि अयोध्या का राज ले लिया जाए, तो मैंने अयोध्या का राज ले लिया तुम्हारी जीत होने से, अयोध्या का राज ले लिया, अब तुम निश्चिंत रहो, मैंने अयोध्या का राज ले लिया। किंतु एक बात है, तुम अब 14 वर्ष तक मेरे प्रतिनिधि बन करके प्रतिनिधि रहो, राजा तो मैं हूं, राजा तो मैंने ले लिया, अब तुम मेरे प्रतिनिधि हो करके मुझे कुछ काम करने हैं, इसलिए यहां रहो, मैं पिताजी का आदेश पालन करके ही, राजा तो मैंने राज्य तो ले लिया, अब प्रतिनिधि हो करके इसको संभालो, और मैं तिथि पूरी होते ही मैं जरूर आ जाऊंगा। उन्होंने उनका आदेश लिया, उनकी खड़ाऊ भी ले ली, मस्तक पर रखे, बोले जी आज मैं कृतार्थ हो गया, आज समझा मुझे क्या करना चाहिए। लौट करके गए, नंदीग्राम में रहे, अयोध्या में नहीं प्रवेश किए, और वहीं रख करके उनके सिंहासन पर रख दिया आप खड़ाऊ को, और प्रतिदिन जैसे राम की सेवा करते हैं वैसे सेवा करते हुए, तनिक भी राम से कम नहीं, खड़ाऊ और राम को एक समझा, और उनके आदेश से राज्य का पालन करते थे संपूर्ण रूप से प्रति, और बोले उनसे राम से, एक दिन की भी यदि अवधि गई और आप नहीं लौटे तो मुझे आप नहीं देख सकेंगे, हमारे शरीर का भस्म आप देखेंगे जलते हुए। बस राम ने कहा मैं निश्चित पहले ही आ जाऊंगा, और ऐसे ही हुआ। तो भक्ति देखो किसको कहते हैं, तन से, मन से, वचन से, समस्त इंद्रियों से अपने इष्ट देव को सुख देना, समझ करके कैसे वो प्रसन्न रहेंगे, इसको कहते हैं भक्ति। यहां पर एक और विचार है, भगवान को प्रसन्न करना ही भक्ति नहीं है, इसलिए बतलाया श्रील रूप गोस्वामी ने, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। ओ आप एक कीर्तन कीजिए तो, ये थोड़ा सा दे दीजिए। तो मैं भक्ति को बतला रहा था, खूब अच्छी तरह से समझेंगे तो भक्ति कर सकेंगे। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान
कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। पहले ही बतलाया अपने तन मन और सारी इंद्रियों से तल धारावत अविच्छिन्न गति से अपने चित्त को लगाना कृष्ण में, भगवान में, और अनुकूल रूप में उनकी सेवा जो है इन सब चेष्टाओं के द्वारा, तो उसे भक्ति कहते हैं। किंतु उसमें अपनी सांसारिक कोई भी कामना न हो, कोई भी कामना सांसारिक न हो, परमार्थिक ये रहेगी कि भगवान के चरणों में, कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, सांसारिक हमारी आसक्तियां कट जाएं, यह तो रहेगी। किंतु अपनी सांसारिक कोई भी कामना नहीं रहेगी, और दूसरी वो चेष्टाएं कर्म और ज्ञान से आच्छादित न रहें। तात्पर्य क्या, ऐसा कोई कर्म मत करो जिसे तुम्हारी भक्ति आच्छादित हो जाए, ऐसा ज्ञान न हो। कैसा ज्ञान? सोहम मैं भी वही ब्रह्म हूं, बस भक्ति चौपट हुई। तुम ही जब ही हो गए तो उसकी सेवा की जरूरत क्या रहेगी, इसलिए तुम कभी जगत की सृष्टि नहीं कर सकते। तुम अभी दुख में बिलबिला रहे हो, तुम ब्रह्म नहीं हो सकते। ज्ञान क्या सा होना चाहिए? तत्व ज्ञान। कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड हैं, ये तो होगा। किंतु मैं ही वही ब्रह्म हूं, ये ज्ञान नहीं रहेगा, नहीं तो ये भक्ति को ढक लेगा, भक्ति को नष्ट कर देगा। इसलिए ऐसे ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान की जरूरत है क्या? कृष्ण ही समस्त ईश्वरों के भी ईश्वरों के ईश्वर हैं, ये तो रहेगी। और ये अभी माया है, जो अटैचमेंट है ये माया है, इसको छोड़ करके जाना है। भक्ति तत्व क्या है इसको भी समझना है, ये चीज की जरूरत है, ये भक्ति के सहायक हैं। इसलिए ऐसा कर्म मत करो। कैसा कर्म? जैसे सांसारिक माता पिता संसार को अच्छी तरह से देखने से, सेवा करने से भक्ति होती है, इसलिए पहले वो करने की जरूरत है और भक्ति चली जाएगी। माता पिता की सेवा करनी है, भक्त के रूप में उनको देखो, यदि भक्तिमान है तो तब उनकी सेवा से आपको भक्ति हो जाएगी। यदि पति भगवान के भक्त हैं तो उनकी भक्ति करो, कोई हर्ज नहीं। किंतु भगवान के वो भक्त नहीं है, विरोधी हैं और भक्तों के विरोधी हैं, तो उनसे सावधान थोड़ा सा रहो। उनके संसारी कर्तव्य जो तुम्हारा है वो तो करो, किनके साथ में आसक्त होकर के, प्रीति युक्त होकर के मत करो। जैसे हिरण्यकश्यपु और महाराज प्रहलाद में बनती नहीं थी, 5 वर्ष का छोटा बच्चा, वो चाहते थे ये भगवान का भजन न करे, नाम न करे। प्रहलाद ने कभी भी उनसे कोई भी उनका अपमान नहीं किया अपनी तरफ से, किंतु उनकी बात भी नहीं मानी, किंतु उनका अपमान नहीं किया, गाली गलौज नहीं की, कुछ उनसे लड़े भिड़े नहीं, किंतु क्या किया? मैं भगवान का भजन चर करूंगा, खंड खंड यदि हमारा प्राण कोई कर दे, शरीर को बोटी बोटी काट करके अलग कर दे, मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ सकता। ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए, अपमान किसी का नहीं करेगा, अपना जो कर्तव्य उनके प्रति है संसारिक वो हम करते चलेंगे, किंतु उनका उनके उस बात को जो भगवान का भजन करना छोड़ दो, सत्संग करना छोड़ दो, ये ब्रह्मा भी आकर के कहेंगे तो उनकी बात नहीं मानूंगा। सत्संग सारो शास्त्रों में सत्संग की बात कही गई है, साधु संग साधु संग साधु संग, और इसके लिए मना कर रहे हैं, ये आपकी बात नहीं सुनूंगा, कहेगा नहीं किंतु सुनेगा नहीं भीतर से।
इस प्रकार से चलना चाहिए। एक उदाहरण देखो, राम कृष्णचंद्र जी जब मथुरा में पहुंचे तो कंस ने नियुक्त किया था चारण मुष्टि को, उस समय हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़े पहलवान थे, वज्र का अंग जैसा सुनते हैं ना, बड़ी बनाते हैं ऐसा वज्र का शरीर और लंबे चौड़े, और कृष्ण दुधमुख के भी बच्चे, छोटे से बच्चे। चारण मुष्टि ने कहा महाराज कंस को प्रसन्न करने के लिए हम लोग थोड़ा सा दाव पेच दिखाएं। कृष्ण बोले हम लोग दाव पेच तो दिखलाना चाहते हैं, प्रसन्नता तो है किंतु कहां आप और कहां मैं, अभी छोटा सा बच्चा मैं और आप कहां पर्वत के समान, आपका शरीर वज्र के समान, ये उचित नहीं। अपने हमारे उम्र वाले बच्चे जो हैं या दूसरे हैं उनसे हम लड़ भी सकते हैं। उन्होंने आंख बंद करके बलदेव जी को और कृष्ण को खींच लिया अखाड़े में। अरे तुम लोग जंगल में रहने वाले, सब समय कुश्ती लड़ने वाले और दूध मक्खन खाने वाले पूतना जैसे बड़े बड़े लोगों को तुम लोगों ने संहार कर दिया क्षण भर में, ये वीरों के लिए नहीं है, तुम लोग वीर आदमी हो, बस महाराज को हम लोग प्रसन्न करना चाहते हैं। जब खींच लिया तो इनको भी जोश आ गया, जोश आ गया था इन्होंने भी, और ये लग करके और कुश्ती लड़ने लगे। आज जब उनसे लड़ रहे हैं, कभी सिर से ठेल करके उधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी वो मरता है, तो इसे इनका बड़ा उत्साह, बड़ा आनंद हुआ, वीर रस का भोग करने लगे बहुत। यह आनंद होना कोई ऐसे यदि चाहता है तो यह आनंद नहीं है, यथार्थ भक्ति नहीं है। क्यों? कृष्ण तो प्रसन्न हो रहे हैं किंतु इसकी नियत क्या है ये देखो, उसके अंदर में नियत क्या है, वो क्या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कर रहा है, ना उसकी नियत क्या है, दाल में कुछ काला है क्या, वो इनको जान से मार डालना चाहता है इसलिए उनको बुलाया। ये कंस को प्रसन्न करना, वो जो कहा ये ठीक कह रहा है, कंस कैसे प्रसन्न होंगे यदि इन दोनों को मार डाला जाए, इसलिए ताल ठोक करके जो लड़ रहा है, और कृष्ण और बलदेव को जो आज बहुत दिनों के बाद वीर रस आस्वादन का मौका मिला, उनको आज तरंग उठ रही उत्साह, और बड़े तरंग से उसके साथ में लड़े, ये उसकी भक्ति नहीं है, कृष्ण तो प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है, भक्ति का विरोधी है, प्रतिकूल भाव है, ये प्रतिकूल भाव भक्ति में नहीं रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? केवल मात्र अनुकूल। अनुकूल माने क्या, अब इसको समझो, जसोदा जी दधि मंथन कर रही हैं और दधि मंथन के साथ में बड़ी सुंदरी हैं, अपूर्व सुंदरी, उनके कपड़ों से छन छन करके, सूक्ष्म वस्त्र तो है ना, उनका सौंदर्य बाहर निकल रहा। मैया सुंदरी नहीं तो बेटा सुंदर हो सकता है, ये कभी नहीं, मैया बाप को सुंदर होना जरूरी है, तो जसोदा जी सुंदरी नहीं होते तो कृष्ण सुंदर होते ही नहीं, इसलिए जसोदा जी कितनी सुंदरी हैं ये कृष्ण के सौंदर्य से अनुमान कुछ लगा सकते हैं। कमर कैसी पतली, मस्तक छल चौड़ा, अपूर्व सुंदरी हैं। जब दधि मंथन कर रही हैं तो उनके मुखारविंदों से पसीने के बूंद मोती जैसे झड़ रहे ने? पसीने के बूंदे आ रही हैं और ऐसे ऐसे कर रही हैं ने? और क्या करें, तन्मय हो गई हैं कृष्ण की बाल लीलाओं को स्मरण करते 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 कृष्ण का के प्रति उनका जो प्रेम है, और गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, कंगन बज रहे हैं हाथों के, मानो ये करताल है, और दधिमंथन से जो शब्द उठ रहा है उस मटकी से, दधिमंथन से घर घर शब्द जो है, ये मानो मृदंग का पिछला भाग है। तो वो क्या कर रहा है, धिक धिक तान, इधर से ये तान, उनको धिकार है जो कृष्ण का भजन नहीं करते, इसलिए धिक तान, धिक तान, तान माने उनको, किनको, जो कृष्ण का जसोदा मैया जैसा भजन नहीं करते, धिक तान धिक तान, और तन में हो रही हैं। और कृष्ण इधर पलंग पर सोए हुए, उनको भूख लगी, अभी बच्चे कितने दिन के हैं, अभी तो 2.5 वर्ष के केवल है, छोटे से बच्चे, अभी नंग धड़ंग सोए हुए हैं, आंखों में काजल यहां तक, और मैया मैया करने लग गए। और उधर मैया तो दधिमंथन कर रही है, एकदम उसमें एकदम लवलीन हो गई है, तन मन की सारी बुद्ध खू गई है, ये भक्ति है। कृष्ण किसी प्रकार से पेट के बल से रंगते हुए बड़ी मुश्किल से पलंग से नीचे उतरे, पृथ्वी को उठाकर दौड़ने में उनको कोई भी, गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी अंगुली पर उठा लिया, इसमें कोई भी कष्ट नहीं, किंतु आज पलंग से उतर नहीं पाते हैं मैया के बिना, कभी तो करवट नहीं ले सकते थे मैया के बिना, स्तन में मुख नहीं दे पाते थे, स्तन में मुख अपने मैया दिलाती थी, तो आज रो रहे हैं, रोते 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 जितने ही जोर से रोते हैं, और मैया तो तन्मय है। थोड़ी देर के बाद में एकदम वहां निकट गए और उनको पकड़ लिया एक हाथ से, और एक हाथ से दधिमंथन को जो दंड है उसको पकड़ लिया, और जोर से रोने लगे। भैया ने देखा ये कौन पकड़ लिया, लाला बस गोदी में उसे उठा लिया, दधिमंथन छोड़ दिया, और इसके बाद में स्तन पिलाने लगे। कितना दूध अथा दूध, कभी कम नहीं सह सकता है, फिर समुद्र इसी से बन सकता है, भर सकता है। और कृष्ण का पेट कितना है, सारा विश्व ब्रह्मांड उनके एक एक रोम कूप में है, तो पेट कितना बड़ा, पेट न भरने का न उनका दूध समाप्त होने का। और पासी में आग पर रखा हुआ दूध उफन रहा है, जो आग की मीठी मीठी वो पा रहा है, उसे उफन रहा, गिर रहा, वो दूध गिर नहीं रहा, बल्कि क्या सोच रहा है, मैया का दूध कोटि प्रलय में भी सूखेगा नहीं, और कृष्ण की भूख भी मिटेगी नहीं, जैसे वो पी रहे हैं, तो हम जो दूध है हमारा उपयोग कैसे आएगा, यदि कृष्ण की सेवा में नहीं लगा तो हमारा जीवन व्यर्थ है। भक्त ऐसा सोचता है कि केनोवा अच्छा ये प्राण की सुख, हमारा प्राण किस लिए, यदि भगवान की सेवा नहीं, भजन नहीं हुआ, नाम नहीं हुआ, तो ये शरीर की कोई भी आवश्यकता नहीं, बेकार का ये है ना? इस प्रकार से भक्त सोचता है, तो वो मानो दूध सोच रहा है, मैं कृष्ण की सेवा में नहीं लग रहा तो आग में जल मरना ही अच्छा है। जसोदा मैया गुरु के रूप में कहते, नहीं नहीं बेटा, पहले तुम्हारी सेवा लगाऊंगी, इसके बाद में मैं अपनी सेवा करूंगी, तुम्हारे बिना काम कैसे चलेगा, हमारे दूध से तो मक्खन नहीं बनेगा, दही बनेगी, मक्खन बनेगा, खीर संदेश बनेगा, ये तो नहीं होगा, तुम्हारे से ही होगा, इसलिए तुमको सेवा में लगाऊंगी। गई और उसको छींटे देकर के शांत किया, दूध को वहां आग से वो हटा दिया। और इधर कृष्ण क्या किया, कृष्ण देखा जैसे पहले ही वो छोड़ नहीं, मैया छोड़ाना चाहते, जब बैठ मैं जाऊं, और कृष्ण ने बंदर की तरफ में पूरा जोर, विश्व ब्रह्मांड का जितनी उनकी शक्ति है पूरी शक्ति लगा दी, यहां पकड़ लिया जोरों से, हाथों से, मुख से पकड़ लिया, स्तन पैरों से भी जकड़ लिए, और मैया ने कहा बैठ यहां, बस उनका सारा जितना सृष्टि शक्ति और जो कुछ भी है धरा रह गया, बैठा, पुतना चाहती चीज छुड़ाना जोर से, किंतु नहीं छूटे। और ये गोपी मैया जसोदा क्या किया, बैठ यहां, दांत कड़मट करने लगे, रोने लगे, और फिर हाँ, उसको तोड़ दिया मटकी को, सब बह गया। मैया आई, देखा जे घर के अंदर में फिर मक्खन चोरी कर रहा है, तो उसके पीछे पीछे लठिया लेकर के गई, दौड़ करके पकड़ करके उसको डरा रही है और रो रहे हैं कृष्ण। तो कृष्ण को रुलाना और एक दूध के लिए अपने बच्चे को अतृप्त रख करके, ये क्या भक्ति है? तो जसोदा का व्यवहार ऐसा लगता है मानो ये भक्ति नहीं है, क्योंकि इसे तो रो रहे हैं कृष्ण, कृष्ण को आनंद कहां हुआ? कृष्ण के प्रति के लिए होना चाहिए, नहीं। ये जसोदा जी किस लिए कर रही हैं? भविष्य देकर के कर रही हैं। क्या भविष्य? हमारे दूध से इसका कुछ नहीं होगा, इसलिए इस दूध की रक्षा करना जरूर है। यदि कृष्ण कभी अपने कपड़े गंदे करता है न? उसको नए नए अच्छे कपड़े पहना दिया, वो यदि गंदा कर रहा था उसका कान पकड़ कर कहिए एक लगा दिया ऐसे, तो कृष्ण करेंगे, तो ये क्या चीज है? यही प्रेम है, कहीं बिगड़ न जाए। भगवान के भक्त लोग भगवान से भी अधिक उसकी वस्तुओं को, उसके प्रिय चीजों को अधिक सहल करके रखते हैं, इसलिए भक्ति बहुत गंभीर है। कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए, यही का श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया। यदि गोपियां संतुष्ट है, गाली देती हैं कृष्ण को और उसे कृष्ण भक्त प्रसन्न रहते हैं, तो क्या कहते? धूर चोर लंपट कह देती हैं, और ब्रह्मा जी के स्तव स्तुति को नहीं सुनते और इनकी गोपियों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। बहुत सी बातें हैं भक्ति की। अब आगे हम, आज बहुत देर हो गई, 8:30 से भी अधिक। अभी दो बच्चे कौन से हैं, कीर्तन करना चाहते हैं तो करें, और इसके बाद में आरती की व्यवस्था करें, जल्दी से, देरी मत कराओ, जल्दी से। इधर तुम तैयारी भी रखो, अधिक देर नहीं करेंगे।